योहन्ना, योहन्ना अध्याय एक। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था, और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है, पर अंधेरा उसे समझ ही नहीं पाया। परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आया, जिसका नाम योहन्ना था। वो एक साक्षी के रूप में आया था, ताकि वह लोगों को प्रकाश के बारे में बता सके, जिससे सभी लोग उसके द्वारा उस प्रकाश में विश्वास कर सकें। वह खुद प्रकाश नहीं था, बल्कि वह तो लोगों को प्रकाश की साक्षी देने आया था, उस प्रकाश की जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था। वह इस जगत में ही था, और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। वह अपने घर आया था, और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं, पर जिन्होंने उसे अपनाया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान के रूप में वह कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, न किसी शारीरिक इच्छा से, और न ही माता पिता की योजना से, बल्कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। योहन्ना ने उसकी साक्षी दी और पुकार कर कहा,
यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है, मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले मौजूद था।
उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किए। हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परम पिता के साथ है, उसे हम पर प्रकट किया। जब यरूशलेम के यहूदियों ने उसके पास लेवियों और याजकों को यह पूछने के लिए भेजा,
तुम कौन हो,
तो उसने साक्षी दी और बिना झिझक स्वीकार किया,
मैं मसीह नहीं हूं।
उन्होंने योहन्ना से पूछा,
तो तुम कौन हो, क्या तुम एलिय्याह हो?
योहन्ना ने जवाब दिया,
नहीं, मैं वह नहीं हूं।
यहूदियों ने पूछा,
क्या तुम भविष्यवक्ता हो?
उसने उत्तर दिया,
नहीं।
फिर उन्होंने उससे पूछा,
तो तुम कौन हो, हमें बताओ, ताकि जिन्होंने हमें भेजा है उन्हें हम उत्तर दे सकें। तुम अपने विषय में क्या कहते हो?
योहन्ना ने कहा,
मैं उसकी आवाज हूँ जो जंगल में पुकार रहा है, प्रभु के लिए सीधा रास्ता बनाओ।
इन लोगों को फरीसियों ने भेजा था, उन्होंने उससे पूछा,
यदि तुम न मसीह हो, न एलिय्याह हो, और न भविष्यवक्ता, तो लोगों को बपतिस्मा क्यों देते हो?
उन्हें जवाब देते हुए योहन्ना ने कहा,
मैं उन्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे ही बीच एक व्यक्ति है जिसे तुम लोग नहीं जानते, यह वही है जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूतों की तनिया खोलने लायक भी नहीं हूँ।
ये घटनाएं यरदन के पार बैतिन्याह में घटी, जहाँ योहन्ना बपतिस्मा देता था। अगले दिन योहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा,
परमेश्वर के मेमने को देखो, जो जगत के पाप को हर ले जाता है, यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आने वाला है जो मुझसे महान है, मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान था। मैं खुद उसे नहीं जानता था, किंतु मैं इसलिए बपतिस्मा देता आ रहा हूँ, ताकि इसराइल के लोग उसे जान ले।
फिर योहन्ना ने अपनी यह साक्षी दी,
मैंने देखा कि कबूतर के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरती हुई आत्मा उस पर अटकी। मैं खुद उसे नहीं जान पाया, पर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था मुझसे कहा, तुम आत्मा को उतरते और किसी पर टिकते देखोगे, यह वही पुरुष है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैंने उसे देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ, वह परमेश्वर का पुत्र है।
अगले दिन यूहन्ना अपने दो चेलों के साथ वहाँ फिर उपस्थित था। जब उसने यीशु को पास से गुजरते देखा, उसने कहा,
देखो परमेश्वर का मेमना।
जब उन दोनों चेलों ने उसे यह कहते सुना तो वे यीशु के पीछे चल पड़े। जब यीशु ने मुड़कर देखा कि वे पीछे आ रहे हैं तो उनसे पूछा,
तुम्हें क्या चाहिए?
उन्होंने जवाब दिया,
रब्बी तेरा निवास कहाँ है?
रब्बी अर्थात गुरु। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
आओ और देखो।
और वे उसके साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि वह कहाँ रहता है। उस दिन वे उसके साथ ठहरे क्योंकि लगभग शाम के 4 बज चुके थे। जिन दोनों ने यूहन्ना की बात सुनी थी और यीशु के पीछे गए थे उनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने भाई शमौन को पाकर उससे कहा,
हमें मसीह मिल गया है।
मसीह अर्थात ख्रिस्ट। फिर अंद्रियास शमौन को यीशु के पास ले आया। यीशु ने उसे देखा और कहा,
तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा।
अगले दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। फिर फिलिप्पुस को पाकर यीशु ने उससे कहा,
मेरे पीछे चला आ।
फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा से था। फिलिप्पुस को नतनेल मिला और उसने उससे कहा,
हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था के विधान में और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, वह है यूसुफ का बेटा, नासरत का यीशु।
फिर नतनेल ने उससे पूछा,
नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु पैदा हो सकती है?
फिलिप्पुस ने जवाब दिया,
जाओ और देखो।
यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसके बारे में कहा,
यह है एक सच्चा इसराइली जिसमें कोई खोट नहीं है।
नतनेल ने पूछा,
तू मुझे कैसे जानता है?
जवाब में यीशु ने कहा,
उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था मैंने देखा था कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था।
नतनेल ने उत्तर में कहा,
हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है।
इसके जवाब में यीशु ने कहा,
तुम इसलिए विश्वास कर रहे हो कि मैंने तुमसे यह कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, तुम आगे इससे भी बड़ी बातें देखोगे।
इसने उससे फिर कहा,
मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, तुम स्वर्ग को खुलते और स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र पर उतरते चढ़ते देखोगे।
यूहन्ना अध्याय 2। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा,
उनके पास अब और दाखरस नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
यह तू मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अभी नहीं आया।
फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा,
वही करो जो तुमसे यह कहता है।
वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा,
मटकों को पानी से भर दो।
और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा,
अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ।
और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहां से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा,
हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है।
यीशु ने गलील के काना में ये पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की जिससे उसके शिष्यों ने उसमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनहूम चला गया, जहां वे कुछ दिन ठहरे। यहूदियों का फसह का पर्व नजदीक था, इसलिए यीशु यरूशलेम चला गया। वहां मंदिर में यीशु ने देखा कि लोग मवेशियों, भेड़ों और कबूतरों की बिक्री कर रहे हैं, और सिक्के बदलने वाले सौदागर अपनी गद्दियों पर बैठे हैं। इसलिए उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और सबको मवेशियों और भेड़ों समेत बाहर खदेड़ दिया, मुद्रा बदलने वालों के सिक्के उड़ेल दिए और उनकी चौकियां पलट दी। कबूतर बेचने वालों से उसने कहा,
इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ, मेरे परम पिता के घर को बाजार मत बनाओ।
इस पर उसके शिष्यों को याद आया कि शास्त्रों में लिखा है,
तेरे घर के लिए मेरी धुन मुझे खा डालेगी।
जवाब में यहूदियों ने यीशु से कहा,
तू हमें कौन सा अद्भुत चिन्ह दिखा सकता है जिससे तू जो कुछ कर रहा है उसका तू अधिकारी है या साबित हो सके?
यीशु ने उन्हें जवाब में कहा,
इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन के भीतर इसे फिर बना दूंगा।
इस पर यहूदी बोले,
इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे और तू इसे 3 दिन में बनाने जा रहा है।
किंतु अपनी बात में जिस मंदिर की चर्चा यीशु ने की थी, वह उसका अपना ही शरीर था। आगे चलकर जब वह मौत के बाद फिर जी उठा, तो उसके अनुयायियों को याद आया कि यीशु ने ये कहा था, और शास्त्रों पर और यीशु के शब्दों पर विश्वास किया। फसह के पर्व के दिनों जब यीशु यरूशलेम में था, बहुत से लोगों ने उसके अद्भुत चिन्हों और कर्मों को देखकर उसमें विश्वास किया, किंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब लोगों को जानता था। उसे इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि कोई आकर उसे लोगों के बारे में बताए, क्योंकि लोगों के मन में क्या है इसे वो जानता था। यूहन्ना अध्याय 3। वहां फरीसियों का एक आदमी था जिसका नाम था निकुदेमुस। वह यहूदियों का नेता था। वह यीशु के पास रात में आया और उससे बोला,
हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ऐसे आश्चर्य कर्म जिसे तू करता है परमेश्वर की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता।
जवाब में यीशु ने उससे कहा,
सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता।
निकुदेमुस ने उससे कहा,
कोई आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद फिर जन्म कैसे ले सकता है? निश्चय ही वह अपनी माँ की कोख में प्रवेश करके दोबारा तो जन्म नहीं ले सकता।
यीशु ने जवाब दिया,
सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूँ, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। मांस से केवल मांस ही पैदा होता है, और जो आत्मा से उत्पन्न हो वह आत्मा है। मैंने तुमसे जो कहा है उस पर आश्चर्य मत करो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो किंतु तुम यह नहीं जान सकते कि वह कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। आत्मा से जन्मा हुआ हर व्यक्ति भी ऐसा ही है।
जवाब में निकुदेमुस ने उससे कहा,
यह कैसे हो सकता है?
यीशु ने उसे जवाब देते हुए कहा,
तुम इसराइलियों के गुरु हो फिर भी यह नहीं जानते? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, हम जो जानते हैं वही बोलते हैं और वही बताते हैं जो हमने देखा है, पर तुम लोग जो हम कहते हैं उसे स्वीकार नहीं करते। मैंने तुम्हें धरती की बातें बताई और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम उन पर कैसे विश्वास करोगे? स्वर्ग में ऊपर कोई नहीं गया सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतर कर आया है, यानी मानव पुत्र। जैसे मूसा ने रेगिस्तान में सांप को ऊपर उठा लिया था, वैसे ही मानव पुत्र भी ऊपर उठा लिया जाएगा, ताकि वे सब जो उसमें विश्वास करते हैं अनंत जीवन पा सकें।
परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह दुनिया को अपराधी ठहराए, बल्कि उसे इसलिए भेजा कि उसके द्वारा दुनिया का उद्धार हो। जो उसमें विश्वास रखता है उसे दोषी न ठहराया जाए, पर जो उसमें विश्वास नहीं रखता उसे दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम में विश्वास नहीं रखा है। इस निर्णय का आधार यह है कि ज्योति इस दुनिया में आ चुकी है, पर ज्योति के बजाय लोग अंधेरे को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं। हर वह आदमी जो पाप करता है ज्योति से घृणा रखता है और ज्योति के नजदीक नहीं आता ताकि उसके पाप उजागर न हो जाएं, पर वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के निकट आता है ताकि यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म परमेश्वर के द्वारा कराए गए हैं। इसके बाद यीशु अपने अनुयायियों के साथ यहूदिया के इलाके में चला गया। वहां उनके साथ ठहरकर वह लोगों को बपतिस्मा देने लगा। वहीं शालेम के पास एनोन में यूहन्ना भी बपतिस्मा दिया करता था, क्योंकि वहां पानी बहुतायत में था। लोग वहां आते और बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना को अभी तक बंदी नहीं बनाया गया था। अब यूहन्ना के कुछ शिष्यों और एक यहूदी के बीच स्वच्छताकरण को लेकर बहस छिड़ गई, इसलिए वे यूहन्ना के पास आए और बोले,
हे रब्बी, जो व्यक्ति यर्दन के उस पार तेरे साथ था और जिसके बारे में तूने बताया था, वही लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और हर आदमी उसके पास जा रहा है।
जवाब में यूहन्ना ने कहा,
किसी आदमी को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक वह उसे स्वर्ग से न दिया गया हो। तुम सब गवाह हो कि मैंने कहा था मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उससे पहले भेजा गया हूँ। दुल्हा वही है जिसे दुल्हन मिलती है, पर दुल्हे का मित्र जो खड़ा रहता है और उसकी अगुवाई में जब दुल्हे की आवाज को सुनता है तो बहुत खुश होता है। मेरी यही खुशी अब पूरी हुई है। अब निश्चित है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। जो ऊपर से आता है वह सबसे महान है। वह जो धरती से है धरती से जुड़ा है, इसलिए वह धरती ही की बातें करता है। जो स्वर्ग से उतरा है सबके ऊपर है। उसने जो कुछ देखा है और सुना है वह उसकी साक्षी देता है, पर उसकी साक्षी को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। जो उसकी साक्षी को मानता है वह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वह जिसे परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर की ही बातें बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आत्मा का अनंत दान दिया है। पिता अपने पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथों में उसने सब कुछ सौंप दिया है। इसलिए वह जो उसके पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन पाता है, पर वह जो परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं मानता उसे वह जीवन नहीं मिलेगा। इसके बजाय उस पर परमपिता परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा।
यूहन्ना अध्याय 4। जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, यद्यपि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था बल्कि यह उसके शिष्य कर रहे थे, तो वह यहूदिया को छोड़कर एक बार फिर वापस गलील चला गया। इस बार उसे सामरिया होकर जाना पड़ा, इसलिए वह सामरिया के एक नगर सुखार में आया। यह नगर उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए वह कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे जल दे।
शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए हुए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा,
तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ।
यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते। उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दे? तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता।
स्त्री ने उससे कहा,
ए महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? निश्चय तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था।
उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
हर एक जो इस कुआं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा, जो उमड़ घुमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा।
तब उस स्त्री ने उससे कहा,
हे महाशय, मुझे वह जल प्रदान कर ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना रहूं और मुझे यहाँ पानी खींचने ना आना पड़े।
इस पर यीशु ने उससे कहा,
जाओ अपने पति को बुलाकर यहाँ ले आओ।
उत्तर में स्त्री ने कहा,
मेरा कोई पति नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
जब तुम यह कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है तो तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे 5 पति थे और तुम अब जिस पुरुष के साथ रहती हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए तुमने जो कहा है सच कहा है।
इस पर स्त्री ने उससे कहा,
महाशय, मुझे तो लगता है कि तू नबी है, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है।
यीशु ने उससे कहा,
हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परम पिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए जो उसकी आराधना करें उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी।
फिर स्त्री ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह यानी क्रिस्ट आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ वही हूँ।
तभी उसके शिष्य वहां लौट आए और उन्हें यह देखकर सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एक स्त्री से बातचीत कर रहा है, पर किसी ने भी उससे कुछ कहा नहीं। तुझे इस स्त्री से क्या लेना है, या तू इससे बातें क्यों कर रहा है? वह स्त्री अपने पानी भरने के घड़े को वहीं छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली,
आओ और देखो, एक ऐसा पुरुष है जिसने मैंने जो कुछ किया है वह सब कुछ मुझे बता दिया, क्या तुम नहीं सोचते कि वो मसीह हो सकता है?
इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुँचे। इसी समय यीशु के शिष्य उससे विनती कर रहे थे,
हे रब्बी, कुछ खा ले।
पर यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते।
इस पर उसके शिष्य आपस में एक दूसरे से पूछने लगे,
क्या कोई उसके खाने के लिए कुछ लाया होगा?
यीशु ने उनसे कहा,
मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। तुम अक्सर कहते हो, 4 महीने और हैं तब फसल आएगी। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी आँखें खोलो और खेतों की तरफ देखो, वे कटने के लिए तैयार हो चुके हैं। वह जो कटाई कर रहा है अपनी मजदूरी पा रहा है और अनंत जीवन के लिए फसल इकट्ठी कर रहा है, ताकि फसल बोने वाला और काटने वाला दोनों ही साथ साथ आनंदित हो सकें। यह कथन वास्तव में सच है, एक व्यक्ति बोता है और दूसरा व्यक्ति काटता है। मैंने तुम्हें उस फसल को काटने भेजा है जिस पर तुम्हारी मेहनत नहीं लगी है, जिस पर दूसरों ने मेहनत की है और उनकी मेहनत का फल तुम्हें मिला है।
उस नगर में बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री के उस शब्दों को उन्होंने साक्षी माना था। मैंने जब कभी जो कुछ किया, उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। जब सामरी उसके पास आए तो उन्होंने उससे उनके साथ ठहरने के लिए विनती की। इस पर वह 2 दिन के लिए वहां ठहरा और उसके वचन से प्रभावित होकर बहुत से और लोग भी उसके विश्वासी हो गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा,
अब हम केवल तुम्हारी साक्षी के कारण ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि अब हमने स्वयं उसे सुना है और अब हम ये जान गए हैं कि वास्तव में यही वह व्यक्ति है जो जगत का उद्धार करता है।
2 दिन बाद वह वहां से गलील को चल पड़ा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था कि कोई नबी अपने ही देश में कभी आदर नहीं पाता है। इस तरह जब वह गलील आया तो गलीलियों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में पर्व के दिनों में किया था, क्योंकि वे सब भी इस पर्व में शामिल थे। यीशु एक बार फिर गलील में काना गया, जहां उसने पानी को दाखरस में बदला था। अब की बार कफरनहूम में एक राजा का अधिकारी था जिसका बेटा बीमार था। जब राजा अधिकारी ने सुना कि यहूदिया से यीशु गलील आया है, तो वह उसके पास आया और विनती की कि वह कफरनहूम जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे, क्योंकि उसका बेटा मरने को पड़ा था। यीशु ने उससे कहा,
अद्भुत संकेत और आश्चर्य कर्म देखे बिना तुम लोग विश्वासी नहीं बनोगे।
राजाधिकारी ने उससे कहा,
महोदय, इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए, मेरे साथ चल।
यीशु ने उत्तर में कहा,
जा, तेरा पुत्र जीवित रहेगा।
यीशु ने जो कुछ कहा था उसने उस पर विश्वास किया और घर चल दिया। वह घर लौटते हुए अभी रास्ते में ही था कि उसे उसके नौकर मिले और उसे समाचार दिया कि उसका बच्चा ठीक हो गया। उसने पूछा,
सही हालत किस समय से ठीक होना शुरू हुई थी?
उन्होंने जवाब दिया,
कल दोपहर 1 बजे उसका बुखार उतर गया था।
बच्चे के पिता को ध्यान आया कि यह ठीक वही समय था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। इस तरह अपने सारे परिवार के साथ वह विश्वासी हो गया। यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो यीशु ने यहूदियों को गलील आने पर दर्शाया। यूहन्ना अध्याय 5। इसके बाद यीशु यहूदियों के एक उत्सव में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बेतहसदा कहा जाता है। इसके किनारे 5 बरामदे बने हैं, जिनमें नेत्रहीन, अपंग और लकवे के बीमारों की भीड़ पड़ी रहती है। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा और ये जाना कि वो इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा,
क्या तुम निरोग होना चाहते हो?
रोगी ने जवाब दिया,
प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उस पे उतर जाता है।
यीशु ने उससे कहा,
खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़।
वो आदमी तत्काल अच्छा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। उस दिन शब्द का दिन था। इस पर यहूदियों ने उससे जो निरोग हुआ था कहना शुरू किया,
आज शब्द का दिन है और हमारे नियमों के यह विरुद्ध है कि तू अपना बिस्तर उठाए।
इस पर उसने जवाब दिया,
जिसने मुझे अच्छा किया है उसने कहा है कि अपना बिस्तर उठा और चल।
उन लोगों ने उससे पूछा,
वह कौन व्यक्ति है जिसने तुझसे कहा था अपना बिस्तर उठा और चल?
पर वह व्यक्ति जो ठीक हुआ था नहीं जानता था कि वह कौन था, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु वहां से चुपचाप चला गया था। इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा,
देखो, अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है।
फिर वह व्यक्ति चला गया और यहूदियों से आकर उसने कहा कि उसे ठीक करने वाला यीशु था, क्योंकि यीशु ने ऐसे काम सब्त के दिन किए थे। इसलिए यहूदियों ने उसे सताना शुरू कर दिया। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,
मेरा पिता कभी काम बंद नहीं करता, इसलिए मैं भी निरंतर काम करता हूँ।
इसलिए यहूदी उसे मार डालने का और अधिक प्रयत्न करने लगे, न केवल इसलिए कि वह सब्त को तोड़ रहा था, बल्कि वह परमेश्वर को अपना पिता भी कहता था और इस तरह अपने आप को परमेश्वर के समान ठहराता था। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि पुत्र स्वयं अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। पिता जो कुछ करता है पुत्र भी वैसे ही करता है। पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह सब कुछ उसे दिखाता है जो वह करता है। उन कामों से भी और बड़ी बड़ी बातें वह उसे दिखाएगा, तब तुम सब आश्चर्य करोगे। जैसे पिता मृतकों को उठाकर उन्हें जीवन देता है, पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, किंतु उसने न्याय करने का अधिकार बेटे को दे दिया है, जिससे सभी लोग पुत्र का आदर वैसे ही करें जैसे वे पिता का करते हैं। जो व्यक्ति पुत्र का आदर नहीं करता वह उस पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, वह अनंत जीवन पाता है, न्याय का दंड उस पर नहीं पड़ेगा, इसके विपरीत वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश पा जाता है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ कि वह समय आने वाला है, बल्कि आ ही चुका है, जब वे जो मर चुके हैं परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेंगे और जो उसे सुनेंगे वे जीवित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे पिता जीवन का स्रोत है, वैसे ही उसने अपने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बनाया है और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर आश्चर्य मत करो कि वह समय आ रहा है जब वे सब जो अपनी कब्रों में हैं उसका वचन सुनेंगे और बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वे पुनरुत्थान पर जीवन पाएंगे, पर जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें पुनरुत्थान पर दंड दिया जाएगा। मैं स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर से जो सुनता हूँ उसी के आधार पर न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय उचित है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी इच्छा से करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं अपनी तरफ से साक्षी दूं, तो मेरी साक्षी सत्य नहीं है। मेरी ओर से साक्षी देने वाला एक और है, और मैं जानता हूं कि मेरी ओर से जो साक्षी वह देता है सत्य है। तुमने लोगों को यूहन्ना के पास भेजा और उसने सत्य की साक्षी दी। मैं मनुष्य की साक्षी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह मैं इसलिए कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। यूहन्ना उस दीपक की तरह था जो जलता है और प्रकाश देता है, और तुम कुछ समय के लिए उसके प्रकाश का आनंद लेना चाहते थे, पर मेरी साक्षी यूहन्ना की साक्षी से बड़ी है, क्योंकि परमपिता ने जो काम पूरे करने के लिए मुझे सौंपे हैं मैं उन्हीं कामों को कर रहा हूं, और वे काम ही मेरे साक्षी हैं कि परमपिता ने मुझे भेजा है। परमपिता ने जिसने मुझे भेजा है मेरी साक्षी दी है। तुम लोगों ने उसका वचन कभी नहीं सुना और न तुमने उसका रूप देखा है, और न ही तुम अपने भीतर उसका संदेश धारण करते हो, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं रखते हो जिसे परमपिता ने भेजा है। तुम शास्त्रों का अध्ययन करते हो क्योंकि तुम्हारा विचार है कि तुम्हें उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होगा, किंतु ये सभी शास्त्र मेरी ही साक्षी देते हैं, फिर भी तुम जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं मनुष्य द्वारा की गई प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता, किंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, किंतु यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे। तुम मुझ में विश्वास कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम तो आपस में एक दूसरे से प्रशंसा स्वीकार करते हो, उस प्रशंसा की तरफ देखते तक नहीं जो एकमात्र परमेश्वर से आती है। ऐसा मत सोचो कि मैं परम पिता के आगे तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। जो तुम्हें दोषी सिद्ध करेगा वह तो मूसा होगा, जिस पर तुमने अपनी आशाएं टिकाई हुई हैं। यदि तुम वास्तव में मूसा में विश्वास करते तो तुम मुझ में भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है। जब तुम जो उसने लिखा है उसी में विश्वास नहीं करते तो मेरे वचन में विश्वास कैसे करोगे?
यूहन्ना अध्याय 6। इसके बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास के उस पार चला गया और उसके पीछे पीछे एक अपार भीड़ चल दी, क्योंकि उन्होंने रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करने में अद्भुत चिन्ह देखे थे। यीशु पहाड़ पर चला गया और वहां अपने अनुयायियों के साथ बैठ गया। यहूदियों का फसह पर्व निकट था। जब यीशु ने आंख उठाई और देखा कि एक विशाल भीड़ उसकी तरफ आ रही है, तो उसने फिलिप्पुस से पूछा,
इन सब लोगों को भोजन कराने के लिए रोटी कहां से खरीदी जा सकती है?
यीशु ने यह बात उसकी परीक्षा लेने के लिए कही थी, क्योंकि वह तो जानता ही था कि वह क्या करने जा रहा है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया,
200 चांदी के सिक्कों से भी इतनी रोटियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, जिनमें से हर आदमी को एक निवाले से थोड़ा भी ज्यादा मिल सके।
यीशु के एक दूसरे शिष्य शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने कहा,
यहाँ एक छोटे लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने सारे लोगों में इतने से क्या होगा?
यीशु ने उत्तर दिया,
लोगों को बैठाओ।
उस स्थान पर अच्छी खासी घास थी, इसलिए लोग वहां बैठ गए। ये लोग लगभग 5,000 पुरुष थे। फिर यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद देने के बाद जो वहां बैठे थे उनको परोस दी। इसी तरह जितनी वे चाहते थे उतनी मछलियां भी उन्हें दे दी। जब उनके पेट भर गए, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
जो टुकड़े बचे हैं उन्हें इकट्ठा कर लो ताकि कुछ बेकार न जाए।
फिर शिष्यों ने लोगों को परोसी गई जौ की उन 5 रोटियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। यीशु के इस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग कहने लगे,
निश्चय ही यह व्यक्ति वही नबी है जिसे इस जगत में आना है।
यीशु यह जानकर कि वे लोग आने वाले हैं और उसे ले जाकर राजा बनाना चाहते हैं, अकेला ही पर्वत पर चला गया। जब शाम हुई, उसके शिष्य झील पर गए और एक नाव में बैठकर वापस झील के पार कफरनहूम की तरफ चल पड़े। अंधेरा काफी हो चला था, किंतु यीशु अभी भी उनके पास नहीं लौटा था। तूफानी हवा के कारण झील में लहरें तेज होने लगी थीं। जब वे कोई 5-6 किलोमीटर आगे निकल गए, उन्होंने देखा कि यीशु झील पर चल रहा है और नाव के पास आ रहा है। इससे वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा,
यह मैं हूँ, डरो मत।
फिर उन्होंने तत्परता से उसे नाव में चढ़ा लिया और नाव शीघ्र ही वहां पहुंच गई जहां उन्हें जाना था। अगले दिन लोगों की उस भीड़ ने जो झील के उस पार रह गई थी देखा कि वहां सिर्फ एक नाव थी और अपने चेलों के साथ यीशु उस पर सवार नहीं हुआ था, बल्कि उसके शिष्य ही अकेले रवाना हुए थे। तिबरियास की कुछ नाव उस स्थान के पास आकर रुकी, जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देने के बाद रोटी खाई थी। इस तरह जब उस भीड़ ने देखा कि न तो वहां यीशु है और न ही उसके शिष्य, तो वे नाव पर सवार हो गए और यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने यीशु को झील के उस पार पाया तो उससे कहा,
हे रब्बी, तू यहाँ कब आया?
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण चिन्ह देखे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने भरपेट रोटी खाई थी। उस खाने के लिए परिश्रम मत करो जो सड़ जाता है, बल्कि उसके लिए जतन करो जो सदा उत्तम बना रहता है और अनंत जीवन देता है, जिसे तुम्हें मानव पुत्र देगा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपनी मोहर उसी पर लगाई है।
लोगों ने उससे पूछा,
जिन कामों को परमेश्वर चाहता है उन्हें करने के लिए हम क्या करें?
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
परमेश्वर जो चाहता है वह यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो।
लोगों ने पूछा,
तू कौन से आश्चर्य चिन्ह प्रकट करेगा जिन्हें हम देखें और तुझ में विश्वास करें? तू क्या कार्य करेगा?
हमारे पूर्वजों ने रेगिस्तान में मन्ना खाया था, जैसा कि पवित्र शास्त्रों में लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी।
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, वह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी, बल्कि यह मेरा पिता है जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। वह रोटी जिसे परम पिता देता है वह स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है।
लोगों ने उससे कहा,
हे प्रभु, अब हमें वह रोटी दे और सदा देता रह।
तब यीशु ने उनसे कहा,
मैं ही वह रोटी हूँ जो जीवन देती है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी तुम मुझ में विश्वास नहीं करते। हर वह व्यक्ति जिसे परम पिता ने मुझे सौंपा है मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने नहीं आया हूं, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं जिसने मुझे भेजा है, और मुझे भेजने वाले की यही इच्छा है कि मैं जिनको परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उनमें से किसी को भी न खोऊं और अंतिम दिन उन सब को जिला दूं। यही मेरे परम पिता की इच्छा है कि हर वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है अनंत जीवन पाए, और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा।
इस पर यहूदियों ने यीशु पर बड़बड़ाना शुरू किया, क्योंकि वह कहता था,
वह रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है।
और उन्होंने कहा,
क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? क्या हम इसके माता पिता को नहीं जानते हैं?
फिर यह कैसे कह सकता है यह स्वर्ग से उतरा है?
उत्तर में यीशु ने कहा,
आपस में बड़बड़ाना बंद करो, मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मुझे भेजने वाला परम पिता उसे मेरे प्रति आकर्षित ना करे। मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। नबियों ने लिखा है और वे सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए होंगे। हर वह व्यक्ति जो परम पिता की सुनता है और उससे सीखता है मेरे पास आता है, किंतु वास्तव में परम पिता को सिवाय उसके जिसे उसने भेजा है किसी ने नहीं देखा। परम पिता को बस उसी ने देखा है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जो विश्वासी है वह अनंत जीवन पाता है। मैं वह रोटी हूं जो जीवन देती है। तुम्हारे पुरखों ने रेगिस्तान में मन्ना खाया था तो भी वे मर गए, जबकि स्वर्ग से आई इस रोटी को यदि कोई खाए तो मरेगा नहीं। मैं ही वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह अमर हो जाएगा, और वह रोटी जिसे मैं दूंगा मेरा शरीर है, इसी से संसार जीवित रहेगा।
फिर यहूदी लोग आपस में यह कहते हुए बहस करने लगे,
यह अपना शरीर हमें खाने को कैसे दे सकता है?
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का शरीर नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे, तब तक तुम में जीवन नहीं होगा। जो मेरा शरीर खाता रहेगा और मेरा लहू पीता रहेगा, अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन मैं उसे फिर जीवित करूंगा। मेरा शरीर सच्चा भोजन है और मेरा लहू ही सच्चा पेय है। जो मेरे शरीर को खाता रहता है और लहू को पीता रहता है, वह मुझ में ही रहता है और मैं उसमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं परम पिता के कारण ही जीवित हूँ, उसी तरह वह जो मुझे खाता रहता है मेरे ही कारण जीवित रहेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह वैसी नहीं है जैसी हमारे पूर्वजों ने खाई थी और बाद में वे मर गए थे। जो इस रोटी को खाता रहेगा सदा के लिए जीवित रहेगा।
यीशु ने ये बातें कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। यीशु के बहुत से अनुयायियों ने इन बातों को सुनकर कहा,
यह शिक्षा बहुत कठिन है, इसे कौन सुन सकता है?
यीशु को अपने आप ही पता चल गया था कि उसके अनुयायियों को इसकी शिकायत है, इसलिए वह उनसे बोला,
क्या तुम इस शिक्षा से परेशान हो? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखो जहाँ वह पहले था तो क्या करोगे? आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और वे ही जीवन देते हैं, किंतु तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं करते।
यीशु शुरू से ही जानता था कि वे कौन हैं जो विश्वासी नहीं हैं और वह कौन है जो उसे धोखा देगा। यीशु ने आगे कहा,
इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक परम पिता उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे देता।
इसी कारण यीशु के बहुत से अनुयायी वापस चले गए और फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। फिर यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा,
क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?
शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
हे प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? वे वचन तो तेरे पास हैं, जो अनंत जीवन देते हैं। अब हमने यह विश्वास कर लिया है और जान लिया कि तू ही वह पवित्रतम है जिसे परमेश्वर ने भेजा है।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना है? फिर भी तुम में से एक शैतान है।
वह शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वह यीशु के खिलाफ होकर उसे धोखा देने वाला था, यद्यपि वह भी उन 12 शिष्यों में से ही एक था। यूहन्ना अध्याय 7। इसके बाद यीशु ने गलील की यात्रा की। वह यहूदिया जाना चाहता था क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे। यहूदियों का खेमों का पर्व आने वाला था, इसलिए यीशु के बंधुओं ने उससे कहा,
तुम्हें यह स्थान छोड़कर यहूदिया चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारे अनुयायी तुम्हारे कामों को देख सकें। कोई भी वह व्यक्ति जो लोगों में प्रसिद्ध होना चाहता है अपने कामों को छिपाकर नहीं करता, क्योंकि तुम आश्चर्यकर्म करते हो, इसलिए सारे जगत के सामने अपने को प्रकट करो।
यीशु के भाई उसमें विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे लिए अभी ठीक समय नहीं आया है, पर तुम्हारे लिए हर समय ठीक है। यह जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, पर मुझसे घृणा करता है, क्योंकि मैं यह कहता रहता हूँ कि इसकी करनी बुरी है। इस पर्व में तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे लिए अभी ठीक समय नहीं आया है।
ऐसा कहने के बाद यीशु गलील में रुक गया। जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह भी गया, पर वह खुले तौर पर नहीं, छिपकर गया था। यहूदी नेता उसे पर्व में यह कहते खोज रहे थे,
वह मनुष्य कहाँ है?
यीशु के बारे में छिपे छिपे उस भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ कह रहे थे,
वह अच्छा व्यक्ति है,
पर दूसरों ने कहा,
नहीं, वह लोगों को भटकाता है।
कोई भी उसके बारे में खुलकर बातें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वे लोग यहूदी नेताओं से डरते थे। जब वह पर्व लगभग आधा बीत चुका था, यीशु मंदिर में गया और उसने उपदेश देना शुरू किया। यहूदी नेताओं ने अचरज के साथ कहा,
यह मनुष्य जो कभी किसी पाठशाला में नहीं गया, फिर इतना कुछ कैसे जानता है?
उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा,
जो उपदेश मैं देता हूँ मेरा अपना नहीं है, बल्कि उससे आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि मनुष्य वह करना चाहे जो परम पिता की इच्छा है, तो वह यह जान जाएगा कि जो उपदेश मैं देता हूँ वह उसका है या मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है वह अपने लिए यश कमाना चाहता है, किंतु वह जो उसे यश देने का प्रयत्न करता है जिसने उसे भेजा है, वही व्यक्ति सच्चा है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है। क्या तुम्हें मूसा ने व्यवस्था का विधान नहीं दिया? पर तुम में से कोई भी उसका पालन नहीं करता। तुम मुझे मारने का प्रयत्न क्यों करते हो?
लोगों ने जवाब दिया,
तुझ पर भूत सवार है जो तुझे मारने का यत्न कर रहा है।
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
मैंने एक आश्चर्य कर्म किया और तुम सब चकित हो गए। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतना का नियम दिया था। यह नियम मूसा का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों से चला आ रहा था, और तुम सप्त के दिन लड़कों का खतना करते हो। यदि सप्त के दिन किसी का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का विधान न टूटे, तो इसके लिए तुम मुझ पर क्रोध क्यों करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक व्यक्ति को पूरी तरह चंगा कर दिया? बातें जैसी दिखती हैं, उसी आधार पर उनका न्याय मत करो, बल्कि जो वास्तव में उचित है उसी के आधार पर न्याय करो।
फिर यरूशलेम में रहने वाले लोगों में से कुछ ने कहा,
क्या यही वह व्यक्ति नहीं है जिसे वे लोग मार डालना चाहते हैं?
मगर देखो, वह सब लोगों के बीच में बोल रहा है और वे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि यहूदी नेता वास्तव में जान गए हैं कि वही मसीह है?
खैर, हम जानते हैं कि यह व्यक्ति कहां से आया है। जब वास्तविक मसीह आएगा तो कोई नहीं जान पाएगा कि वह कहां से आया।
यीशु जब मंदिर में उपदेश दे रहा था, उसने ऊंचे स्वर में कहा,
तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो मैं कहां से आया हूं। फिर भी मैं अपनी ओर से नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है। तुम उसे नहीं जानते, पर मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसी से आया हूं।
फिर वे उसे बंदी बनाने का जतन करने लगे, पर कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। तो भी बहुत से लोग उसमें विश्वासी हो गए और कहने लगे,
जब मसीह आएगा तो वह जितने आश्चर्य चिन्ह इस व्यक्ति ने प्रकट किए हैं उनसे अधिक नहीं करेगा। क्या वह ऐसा करेगा?
भीड़ में लोग यीशु के बारे में चुपके चुपके क्या बात कर रहे हैं, फरीसियों ने सुना, और प्रमुख धर्माधिकारियों तथा फरीसियों ने उसे बंदी बनाने के लिए मंदिर के सिपाहियों को भेजा। फिर यीशु बोला,
मैं तुम लोगों के साथ कुछ समय और रहूंगा और फिर उसके पास वापस चला जाऊंगा। जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे पर तुम मुझे पाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग वहां जा नहीं पाओगे जहां मैं होऊंगा।
इसके बाद यहूदी नेता आपस में बात करने लगे,
यह कहां जाने वाला है जहां हम इसे नहीं ढूंढ पाएंगे?
शायद यह वही तो नहीं जा रहा है जहां हमारे लोग यूनानी नगरों में तितर बितर होकर रहते हैं। क्या यह यूनानियों में उपदेश देगा?
जो इसने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे पर मुझे नहीं पाओगे और जहां मैं होऊंगा वहां तुम नहीं आ सकते, इसका अर्थ क्या है?
पर्व के अंतिम और महत्वपूर्ण दिन यीशु खड़ा हुआ और उसने ऊंचे स्वर में कहा,
अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वासी है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उसके अंतरात्मा से स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी।
यीशु ने यह आत्मा के विषय में कहा था, जिसे वे लोग पाएंगे उसमें विश्वास करेंगे। वह आत्मा अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ। भीड़ के कुछ लोगों ने जब यह सुना, वे कहने लगे,
यह आदमी निश्चय ही वही नबी है।
कुछ और लोग कह रहे थे,
यही व्यक्ति मसीह है।
कुछ और लोग कह रहे थे,
मसीह गलील से नहीं आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद की संतान होगा और बैतलहम से आएगा, जिस नगर में दाऊद रहता था?
इस तरह लोगों में फूट पड़ गई। कुछ उसे बंदी बनाना चाहते थे पर किसी ने भी उस पर हाथ नहीं डाला। इसलिए मंदिर के सिपाही प्रमुख धर्माधिकारियों और फरीसियों के पास लौट आए। इस पर उनसे पूछा गया,
तुम उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए?
सिपाहियों ने जवाब दिया,
कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसे नहीं बोला जैसे वह बोलता है।
इस पर फरीसियों ने उनसे कहा,
क्या तुम भी तो भरमाए नहीं गए हो? किसी भी यहूदी नेता या फरीसियों ने उसमें विश्वास नहीं किया है, किंतु ये लोग जिन्हें व्यवस्था के विधान का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के अभिशाप के पात्र हैं।
निकुदेमुस ने, जो पहले यीशु के पास गया था, उन फरीसियों में से ही एक था, उनसे कहा,
हमारी व्यवस्था का विधान किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक उसकी सुन नहीं लेता और यह पता नहीं लगा लेता कि उसने क्या किया है।
उत्तर में उन्होंने उससे कहा,
क्या तू भी तो गलील का ही नहीं है? शास्त्रों को पढ़ तो तुझे पता चलेगा कि गलील से कोई नबी कभी नहीं आएगा।
फिर वे सब वहां से अपने अपने घर चले गए। यूहन्ना अध्याय 8। और यीशु जैतून पर्वत पर चला गया। अलग सवेरे वह फिर मंदिर में गया। सभी लोग उसके पास आए। यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोले,
हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है ऐसी स्त्री को पत्थर मारना चाहिए। अब बता, तेरा क्या कहना है?
यीशु को जांचने के लिए यह पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लगाया जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा। क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तनकर खड़ा हो गया और उनसे बोला,
तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे।
और वह फिर झुककर धरती पर लिखने लगा। जब लोगों ने यह सुना तो सबसे पहले बूढ़े लोग और फिर और भी एक एक करके वहां से खिसकने लगे और इस तरह वहां अकेला यीशु ही रह गया। यीशु के सामने वह स्त्री अब भी खड़ी थी। यीशु खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला,
हे स्त्री, वे सब कहां गए? क्या तुम्हें किसी ने दोषी नहीं ठहराया?
स्त्री बोली,
हे महोदय, किसी ने नहीं।
यीशु ने कहा,
मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब फिर कभी पाप मत करना।
फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा,
मैं जगत का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है।
इस पर फरीसी उससे बोले,
तू अपनी साक्षी अपने आप दे रहा है, इसलिए तेरी साक्षी उचित नहीं है।
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
यदि मैं अपनी साक्षी स्वयं अपनी तरफ से दे रहा हूँ तो भी मेरी साक्षी उचित है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, किंतु तुम लोग यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम लोग इंसानी सिद्धांतों पर न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, किंतु यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय उचित होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं बल्कि परम पिता जिसने मुझे भेजा है वह और मैं मिलकर न्याय करते हैं। तुम्हारे विधान में लिखा है कि दो व्यक्तियों की साक्षी न्याय संगत है। मैं अपनी साक्षी स्वयं देता हूं और परमपिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरी ओर से साक्षी देता है।
इस पर लोगों ने उससे कहा,
तेरा पिता कहाँ है?
यीशु ने उत्तर दिया,
न तो तुम मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान लेते।
मंदिर में उपदेश देते हुए भेंट पात्रों के पास से उसने ये शब्द कहे थे, किंतु किसी ने भी उसे बंदी नहीं बनाया, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। यीशु ने उनसे एक बार फिर कहा,
मैं चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे ढूंढोगे, पर तुम अपने ही पापों में मर जाओगे। जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते।
फिर यहूदी नेता कहने लगे,
क्या तुम सोचते हो कि वह आत्महत्या करने वाला है, क्योंकि उसने कहा है तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं।
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तुम नीचे के हो और मैं ऊपर से आया हूं, तुम सांसारिक हो और मैं इस जगत से नहीं हूं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि वह मैं हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे।
फिर उन्होंने यीशु से पूछा,
तू कौन है?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं वही हूँ जैसा कि प्रारंभ से ही मैं तुमसे कहता आ रहा हूँ। तुमसे कहने को और तुम्हारा न्याय करने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर सत्य वही है जिसने मुझे भेजा है। मैं वही कहता हूँ जो मैंने उससे सुना है।
वे यह नहीं जान पाए कि यीशु उन्हें परम पिता के बारे में बता रहा है। फिर यीशु ने उनसे कहा,
जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठा लोगे तब तुम जानोगे कि वह मैं हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, मैं यह जो कह रहा हूँ वही है जो मुझे परम पिता ने सिखाया है, और वह जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे भाता है।
यीशु जब ये बातें कह रहा था तो बहुत से लोग उसके विश्वासी हो गए। सो यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे,
यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे और सत्य को जान लोगे, और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा।
इस पर उन्होंने यीशु से प्रश्न किया,
हम इब्राहिम के वंशज हैं और हमने कभी किसी की दासता नहीं की, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम मुक्त हो जाओगे?
यीशु ने उत्तर देते हुए कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, हर वह जो पाप करता रहता है पाप का दास है, और कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही सदा साथ रह सकता है। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। मैं जानता हूँ तुम इब्राहीम के वंश से हो, पर तुम मुझे मार डालने का यत्न कर रहे हो, क्योंकि मेरे उपदेशों के लिए तुम्हारे मन में कोई स्थान नहीं है। मैं वही कहता हूँ जो मुझे मेरे पिता ने दिखाया है, और तुम वह करते हो जो तुम्हारे पिता से तुमने सुना है।
इस पर उन्होंने यीशु को उत्तर दिया,
हमारे पिता इब्राहीम हैं।
यीशु ने कहा,
यदि तुम इब्राहीम की संतान होते तो तुम वही काम करते जो इब्राहीम ने किए थे, पर तुम तो अब मुझे यानी एक ऐसे मनुष्य को जो तुमसे उस सत्य को कहता है जिसे उसने परमेश्वर से सुना है मार डालना चाहते हो। इब्राहीम ने तो ऐसा नहीं किया, तुम अपने पिता के कार्य करते हो।
फिर उन्होंने यीशु से कहा,
हम व्यभिचार के परिणाम स्वरूप पैदा नहीं हुए हैं, हमारा केवल एक पिता है और वह है परमेश्वर।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से ही आया हूँ और अब मैं यहाँ हूँ। मैं अपने आप से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे उसने भेजा है। मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम समझते क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि तुम मेरा संदेश नहीं सुनते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह प्रारंभ से ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। पर क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करोगे। तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का लांछन लगा सकता है? यदि मैं सत्य कहता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वह व्यक्ति जो परमेश्वर का है परमेश्वर के वचनों को सुनता है। इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो।
उत्तर में यहूदियों ने उससे कहा,
यह कहते हुए क्या हम सही नहीं थे कि तू सामरी है और तुझ पर कोई दुष्ट आत्मा सवार है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मुझ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, बल्कि मैं तो अपने परम पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा अपमान करते हो। मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूँ, पर एक ऐसा है जो मेरी महिमा चाहता है और न्याय भी करता है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यदि कोई मेरे उपदेशों को धारण करेगा तो वह मौत को कभी नहीं देखेगा।
इस पर यहूदी नेताओं ने उससे कहा,
अब हम जान गए हैं कि तुम में कोई दुष्टात्मा समाया है, यहाँ तक कि इब्राहिम और नबी भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे उपदेश पर चले तो उसकी मौत कभी नहीं होगी। निश्चय ही तू हमारे पूर्वज इब्राहिम से बड़ा नहीं है जो मर गया और नबी भी मर गए, फिर तू क्या सोचता है, तू है क्या?
यीशु ने उत्तर दिया,
यदि मैं अपनी महिमा करूं, तो वह महिमा मेरी कुछ भी नहीं है। जो मुझे महिमा देता है वह मेरा परम पिता है, जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उसे कभी नहीं जाना, पर मैं उसे जानता हूं। यदि मैं यह कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं भी तुम लोगों की ही तरह झूठा ठहरूंगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं और जो वह कहता है उसका पालन करता हूं। तुम्हारा पूर्वज इब्राहीम मेरा दिन को देखने की आशा से आनंद से भर गया था, उसने देखा और प्रसन्न हुआ।
फिर यहूदी नेताओं ने उससे कहा,
तू अभी 50 बरस का भी नहीं है और तूने इब्राहिम को देख लिया है।
यीशु ने इस पर उनसे कहा,
मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ।
इस पर उन्होंने यीशु पर मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा लिए, किंतु यीशु छुपते छुपाते मंदिर से चला गया। यूहन्ना अध्याय 9। जाते हुए उसने जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। इस पर यीशु के अनुयायियों ने उससे पूछा,
हे रब्बी, यह व्यक्ति अपने पापों से अंधा जन्मा है या अपने माता पिता के?
यीशु ने उत्तर दिया,
ना तो इसने पाप किए हैं और न इसके माता पिता ने, बल्कि यह इसलिए अंधा जन्मा है ताकि इसे अच्छा करके परमेश्वर की शक्ति दिखाई जा सके। उसके कामों को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चित रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। जब मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं।
इतना कहकर यीशु ने धरती पर थूका और उससे थोड़ी मिट्टी सानी, उसे अंधे की आंखों पर मल दिया और उससे कहा,
जा और शीलोह के तालाब में धो आ।
शीलोह अर्थात भेजा हुआ। और फिर उस अंधे ने जाकर आंखें धो डाली। जब वह लौटा तो उसे दिखाई दे रहा था। फिर उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे भीख मांगता देखने के आदि थे बोले,
क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था?
कुछ ने कहा,
यह वही है।
दूसरों ने कहा,
नहीं, यह वह नहीं है, उसके जैसा दिखाई देता है।
इस पर अंधा कहने लगा,
मैं वही हूँ।
इस पर लोगों ने उससे पूछा,
तुझे आंखों की ज्योति कैसे मिली?
उसने जवाब दिया,
यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर मली और मुझसे कहा, जा और शीलोह में धो आ, और मैं जाकर धो आया, बस मुझे आंखों की ज्योति मिल गई।
फिर लोगों ने उससे पूछा,
वह कहाँ है?
उसने जवाब दिया,
मुझे पता नहीं।
उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था वे लोग फरीसियों के पास ले गए। यीशु ने जिस दिन मिट्टी सान कर उस अंधे को आंखें दी थीं, वह सप्त का दिन था। इस तरह फरीसी उससे एक बार फिर पूछने लगे,
उसने आंखों की ज्योति कैसे पाई?
उसने बताया,
उसने मेरी आंखों पर गीली मिट्टी लगाई, मैंने उसे धोया और अब मैं देख सकता हूँ।
कुछ फरीसी कहने लगे,
यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यह शब्द का पालन नहीं करता।
उस पर दूसरे बोले,
कोई पापी आदमी भला ऐसे आश्चर्य कर्म कैसे कर सकता है?
इस तरह उनमें आपस में ही विवाद होने लगा। वे एक बार फिर उस अंधे से बोले,
उसके बारे में तू क्या कहता है, क्योंकि इस तथ्य को तू जानता है कि उसने तुझे आंखें दी है।
तब उसने कहा,
वह नबी है।
यहूदी नेताओं ने उस समय तक उस पर विश्वास नहीं किया कि वह व्यक्ति अंधा था और उसे आंखों की ज्योति मिल गई है, जब तक उसके माता पिता को बुलाकर उन्होंने यह नहीं पूछ लिया,
क्या यही तुम्हारा पुत्र है जिसके बारे में तुम कहते हो कि वह अंधा था? फिर यह कैसे हो सकता है कि वह अब देख सकता है?
इस पर उसके माता पिता ने उत्तर देते हुए कहा,
हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह अंधा जन्मा था,
पर हम यह नहीं जानते कि आप कैसे देख सकता है, और ना ही हम यह जानते हैं कि इसे आंखों की ज्योति किसने दी है। इसी से पूछो, यह काफी बड़ा हो चुका है, अपने बारे में यह खुद बता सकता है।
उसके माता पिता ने यह बात इसलिए कही थी कि वे यहूदी नेताओं से डरते थे, क्योंकि वे इस पर पहले ही सहमत हो चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह माने तो उसे आराधनालय से निकाल दिया जाए। इसलिए उसके माता पिता ने कहा था, वह काफी बड़ा हो चुका है, उससे पूछो। यहूदी नेताओं ने उस व्यक्ति को दूसरी बार फिर बुलाया जो अंधा था और कहा,
सच कहो और जो तू ठीक हुआ है उसका सिला परमेश्वर को दे, हमें मालूम है कि यह व्यक्ति पापी है।
इस पर उसने जवाब दिया,
मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देख सकता हूँ।
इस पर उन्होंने उससे पूछा,
उसने क्या किया, तुझे उसने आँखें कैसे दी?
इस पर उसने उन्हें जवाब देते हुए कहा,
मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम वह सब कुछ दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके अनुयायी बनना चाहते हो?
इस पर उन्होंने उसका अपमान किया और कहा,
तू उसका अनुयायी है पर हम मूसा के अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की थी पर हम नहीं जानते कि यह आदमी कहां से आया है।
उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने उनसे कहा,
आश्चर्य है तुम नहीं जानते कि वह कहां से आया है पर मुझे उसने आंखों की ज्योति दी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता बल्कि वह तो उनकी सुनता है जो समर्पित है और वही करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। कभी सुना नहीं गया कि किसी ने किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखों की ज्योति दी हो। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो यह कुछ नहीं कर सकता था।
उत्तर में उन्होंने कहा,
तू सदा से पापी रहा है ठीक तब से जब से तू पैदा हुआ और अब तू हमें पढ़ाने चला है।
और इस तरह यहूदी नेताओं ने उसे वहाँ से बाहर धकेल दिया। यीशु ने सुना कि यहूदी नेताओं ने उसे धकेल कर बाहर निकाल दिया है तो उससे मिलकर उसने कहा,
क्या तू मनुष्य के पुत्र में विश्वास करता है?
उत्तर में वह व्यक्ति बोला,
हे प्रभु बताइए वह कौन है ताकि मैं उसमें विश्वास करूं।
यीशु ने उससे कहा,
तू उसे देख चुका है और वह वही है जिससे तू इस समय बात कर रहा है।
फिर वह बोला,
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ।
और वह नतमस्तक हो गया। यीशु ने कहा,
मैं इस जगत में न्याय करने आया हूँ ताकि वे जो नहीं देखते वे देखने लगें और वे जो देख रहे हैं नेत्रहीन हो जाएं।
कुछ फरीसी जो यीशु के साथ थे यह सुनकर यीशु से बोले,
निश्चय ही हम अंधे नहीं हैं। क्या हम अंधे हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
यदि तुम अंधे होते तो तुम पापी नहीं होते पर जैसा कि तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो तो वास्तव में तुम पाप युक्त हो।
यूहन्ना अध्याय 10। यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ जो भेड़ों के बाड़े में द्वार से प्रवेश न करके बाड़ा फांदकर कर दूसरे प्रकार से घुसता है वह चोर है लुटेरा है किंतु जो दरवाजे से घुसता है वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। भेड़ें किसी अनजान का अनुसरण कभी नहीं करती, वे तो उससे दूर भागती हैं क्योंकि वे उस अनजान की आवाज नहीं पहचानती।
यीशु ने उन्हें ये दृष्टांत दिया पर वे नहीं समझ पाए कि यीशु उन्हें क्या बता रहा है। इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा,
मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। वे सब जो मुझसे पहले आए थे चोर और लुटेरे हैं किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं द्वार हूँ, यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वह भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उसे चारागाह मिलेगी। चोर केवल चोरी हत्या और विनाश के लिए ही आता है किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सकें। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है किंतु किराए का मजदूर क्योंकि वह चरवाहा नहीं होता भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती। जब भेड़िये को आते देखता है भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर देता है। किराए का मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह दैनिक मजदूरी का आदमी है और इसीलिए भेड़ों की परवाह नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों को मैं जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे वैसे ही जानती हैं जैसे परमपिता मुझे जानता है और मैं परमपिता को जानता हूँ। अपनी भेड़ों के लिए मैं अपना जीवन देता हूँ। मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी लाना होगा। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी और इसी बाड़े में आकर एक हो जाएंगी। फिर सबका एक ही चरवाहा होगा। परमपिता मुझसे इसीलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूँ। मैं अपना जीवन देता हूँ ताकि मैं उसे फिर वापस ले सकूं। इसे मुझसे कोई लेता नहीं है, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से इसे देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है। यह आदेश मुझे मेरे परम पिता से मिला है।
इन शब्दों के कारण यहूदी नेताओं में एक और फूट पड़ गई। बहुत से कहने लगे,
यह पागल हो गया है, इस पर दुष्टात्मा सवार है, तुम इसकी परवाह क्यों करते हो?
दूसरे कहने लगे,
ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं हो सकते जिस पर दुष्टात्मा सवार हो।
निश्चय ही कोई दुष्टात्मा किसी अंधे को आंखें नहीं दे सकती।
फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया। सर्दी के दिन थे। यीशु मंदिर में सुलेमान के दालान में टहल रहा था। तभी यहूदी नेताओं ने उसे घेर लिया और बोले,
तू हमें कब तक तंग करता रहेगा? यदि तू मसीह है तो साफ साफ बता।
यीशु ने उत्तर दिया,
मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम विश्वास नहीं करते। वे काम जिन्हें मैं परम पिता के नाम पर कर रहा हूँ स्वयं मेरी साक्षी हैं, किंतु तुम लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। उनका कभी नाश नहीं होगा और न कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा। मुझे उन्हें सौंपने वाला मेरा परम पिता सबसे महान है। मेरे पिता से उन्हें कोई नहीं छीन सकता। मेरा पिता और मैं एक हैं।
फिर यहूदी नेताओं ने यीशु पर मारने के लिए पत्थर उठा लिए। यीशु ने उनसे कहा,
पिता की ओर से मैंने तुम्हें अनेक अच्छे कार्य दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पे पथराव करना चाहते हो?
यहूदी नेताओं ने उसे उत्तर दिया,
हम तुझ पर किसी अच्छे काम के लिए पथराव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि तूने परमेश्वर का अपमान किया है और तू जो केवल एक मनुष्य है अपने को परमेश्वर घोषित कर रहा है।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
क्या यह तुम्हारे विधान में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम सभी ईश्वर हो? क्या यहाँ ईश्वर उन्हीं लोगों के लिए नहीं कहा गया जिन्हें परम पिता का संदेश मिल चुका है और धर्मशास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता? क्या तू परमेश्वर का अपमान कर रहा है यह उसके लिए कह रहे हो जिसे परम पिता ने समर्पित कर इस जगत को भेजा है, केवल इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? यदि मैं अपने परम पिता के ही कार्य नहीं कर रहा हूँ तो मेरा विश्वास मत करो, किंतु यदि मैं अपने परम पिता के ही कार्य कर रहा हूँ तो यदि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते तो उन कार्यों में ही विश्वास करो जिससे तुम यह अनुभव कर सको और जान सको कि परम पिता मुझ में है और मैं परम पिता में।
इस पर यहूदियों ने उसे बंदी बनाने का प्रयत्न एक बार फिर किया, पर यीशु उनके हाथों से बच निकला। यीशु फिर यरदन नदी के पार उस स्थान पर चला गया जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। यीशु वहां ठहरा। बहुत से लोग उसके पास आए और कहने लगे,
यहूना ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए, पर इस व्यक्ति के बारे में यहूना ने जो कुछ कहा था सब सच निकला।
फिर वहाँ बहुत से लोग यीशु में विश्वासी हो गए। यूहन्ना अध्याय 11। बैतिन्याह का लाजर नाम का एक व्यक्ति बीमार था। यह वह नगर था जहां मरियम और उसकी बहन मार्था रहती थीं। मरियम वह स्त्री थी जिसने प्रभु पर इत्र डाला था और अपने सिर के बालों से प्रभु के पैर पोंछे थे। लाजर नाम का रोगी उसी का भाई था। इन बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा।
हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वह बीमार है।
यीशु ने जब यह सुना तो वह बोला,
यह बीमारी जानलेवा नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी।
यीशु मार्था, उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था, इसलिए जब उसने सुना कि लाजर बीमार हो गया है तो जहां वह ठहरा था 2 दिन और रुका। फिर यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा,
आओ हम यहूदिया लौट चलें।
इस पर उसके अनुयायियों ने उससे कहा,
हे रब्बी, कुछ ही दिन पहले यहूदी नेता तुझ पर पथराव करने का यत्न कर रहे थे और तू फिर वहीं जा रहा है।
यीशु ने उत्तर दिया,
क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रकाश में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के प्रकाश को देखता है, पर यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है।
उसने यह कहा और फिर उसने बोला,
हमारा मित्र लाजर सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूं।
फिर उसके शिष्यों ने उससे कहा,
हे प्रभु, यदि उसे नींद आ गई है तो वह अच्छा हो जाएगा।
यीशु लाजर की मौत के बारे में कह रहा था, पर शिष्यों ने सोचा कि वह स्वाभाविक नींद की बात कर रहा था, इसलिए फिर यीशु ने उनसे स्पष्ट कहा,
लाजर मर चुका है, मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि अब तुम मुझ में विश्वास कर सकोगे। आओ अब हम उसके पास चलें।
फिर थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता था, दूसरे शिष्यों से कहा,
आओ हम भी प्रभु के साथ वहाँ चले ताकि हम भी उसके साथ मर सकें।
इस तरह यीशु चल दिया और वहाँ जाकर उसने पाया कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतिन्याह यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह उनसे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा,
हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं, पर मैं जानती हूँ कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा।
यीशु ने उससे कहा,
तेरा भाई जी उठेगा।
मार्था ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ, वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है?
वह यीशु से बोली,
हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो जगत में आने वाला था।
फिर इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और अपनी बहन को अकेले में बुलाकर बोली,
गुरु यही है, वह तुझे बुला रहा है।
जब मरियम ने यह सुना तो वह तत्काल उठकर उससे मिलने चल दी। यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था, वह अभी भी उसी स्थान पर था जहां उसे मार्था मिली थी। फिर जो यहूदी घर पर उसे सांत्वना दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मरियम उठकर झटपट चल दी तो वे यह सोचकर कि वह कब्र पर विलाप करने जा रही है उसके पीछे हो लिए। मरियम जब वहां पहुंची जहां यीशु था तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली,
हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं।
यीशु ने जब उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते बिलखते देखा तो उसकी आत्मा तड़प उठी। वो बहुत व्याकुल हुआ और बोला,
तुमने उसे कहाँ रखा है?
वे उससे बोले,
प्रभु आ और देख।
यीशु फूट फूट कर रोने लगा। इस पर यहूदी कहने लगे,
देखो ये लाजर को कितना प्यार करता है।
मगर उनमें से कुछ ने कहा,
यह व्यक्ति जिसने अंधे को आंखें दी क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता?
तब यीशु अपने मन में एक बार फिर बहुत अधिक व्याकुल हुआ और कब्र की तरफ गया। यह एक गुफा थी और उसका द्वार एक चट्टान से ढका हुआ था। यीशु ने कहा,
इस चट्टान को हटाओ।
मृतक की बहन मार्था ने कहा,
हे प्रभु, अब तक तो वहाँ से दुर्गंध आ रही होगी क्योंकि उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं।
यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी?
तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आँखें ऊपर उठाते हुए कहा,
परम पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है, जिससे वे यह मान सकें कि मुझे तूने भेजा है।
यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर में पुकारा,
लाजर बाहर आ।
वह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे, उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा,
इसे खोल दो और जाने दो।
इसके बाद मरियम के साथ आए यहूदियों में से बहुतों ने यीशु के इस कार्य को देखकर उस पर विश्वास किया, किंतु उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और जो कुछ यीशु ने किया था उन्हें बताया। फिर महायाजकों और फरीसियों ने यहूदियों की सबसे ऊंची परिषद बुलाई और कहा,
हमें क्या करना चाहिए? यह व्यक्ति बहुत से आश्चर्य चिन्ह दिखा रहा है।
यदि हमने उसे ऐसे ही करते रहने दिया तो हर कोई उस पर विश्वास करने लगेगा और इस तरह रोमी लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारे मंदिर व देश को नष्ट कर देंगे।
किंतु उस वर्ष के महायाजक कैफा ने उनसे कहा,
तुम लोग कुछ भी नहीं जानते और न ही तुम्हें इस बात की समझ है कि इसी में तुम्हारा लाभ है कि बजाय इसके कि सारी जाति ही नष्ट हो जाए, सबके लिए एक आदमी को मरना होगा।
यह बात उसने अपनी तरफ से नहीं कही थी, पर क्योंकि वह उस साल का महायाजक था, उसने भविष्यवाणी की थी कि यीशु लोगों के लिए मरने जा रहा है, न केवल यहूदियों के लिए बल्कि परमेश्वर की संतान जो तितर बितर है उन्हें एकत्र करने के लिए। इस तरह उसी दिन से वे यीशु को मारने के कुचक्र रचने लगे। यीशु यहूदियों के बीच फिर कभी प्रकट होकर नहीं गया और यरूशलेम छोड़कर वह निर्जन रेगिस्तान के पास इफ्राइम नगर जाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व आने को था। बहुत से लोग अपने गांव से यरूशलेम चले गए थे ताकि वे फसह पर्व से पहले अपने को पवित्र कर लें। वे यीशु को खोज रहे थे, इसलिए जब वे मंदिर में खड़े थे तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछना शुरू किया,
तुम क्या सोचते हो? क्या निश्चय ही वह इस पर्व में नहीं आएगा?
फिर महायाजकों और फरीसियों ने यह आदेश दिया कि यदि किसी को पता चले कि यीशु कहाँ है तो वह इसकी सूचना दे ताकि वे उसे बंदी बना सकें। यूहन्ना अध्याय 12। फसह पर्व से 6 दिन पहले यीशु बैतिन्याह को रवाना हो गया। वहीं लाजर रहता था जिसे यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। वहां यीशु के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया। मार्था ने उसे परोसा। यीशु के साथ भोजन के लिए जो बैठे थे लाजर भी उनमें एक था। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ कोई आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर लगाया
और फिर अपने केशों से उसके चरणों को पोंछा। सारा घर सुगंध से महक उठा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखा देने वाला था, कहा,
इस इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया?
उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे गरीबों की बहुत चिंता थी, बल्कि वह तो स्वयं एक चोर था और रुपयों की थैली उसी के पास रहती थी। उसमें जो डाला जाता उसे वह चुरा लेता था। तब यीशु ने कहा,
रहने दो, उसे रोको मत। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में यह सब किया है। गरीब लोग सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा।
फसह पर्व पर आई यहूदियों की भारी भीड़ को जब ये पता चला कि यीशु वहीं बैतिन्याह में है, तो वह उनसे मिलने आई। न केवल उससे, बल्कि वह उस लाजर को देखने के लिए भी आई थी, जिसे यीशु ने मरने के बाद फिर जीवित कर दिया था। इसलिए महायाजकों ने लाजर को भी मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसी के कारण बहुत से यहूदी अपने नेताओं को छोड़कर यीशु में विश्वास करने लगे थे। अगले दिन फसह पर्व पर आई भीड़ ने जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो लोग खजूर की टहनियां लेकर उससे मिलने चल पड़े। वे पुकार रहे थे,
होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वह जो इज़राइल का राजा है।
तब यीशु को एक गधा मिला और वह उस पर सवार हो गया, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है,
सियोन के लोगों, डरो मत, देखो तुम्हारा राजा गधे के बछेरे पर बैठा आ रहा है।
पहले तो उसके अनुयायी इसे समझे ही नहीं, किंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उन्हें याद आया कि शास्त्र में ये बातें उसके बारे में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसके साथ जो भीड़ थी उसने यह साक्षी दी कि उसने लाजर की कब्र से पुकार कर मरे हुओं में से पुनर्जीवित किया। लोग उससे मिलने इसलिए आए थे कि उन्होंने सुना था कि यह वही है जिसने वह आश्चर्य कर्म किया है। तब फरीसी आपस में कहने लगे,
सोचो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो सारा जगत उसके पीछे हो लिया है।
फसह पर्व पर जो आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। वे गलील में बैतसैदा के निवासी फिलिप्पुस के पास गए और उससे विनती करते हुए कहने लगे,
महोदय, हम यीशु के दर्शन करना चाहते हैं।
तब फिलिप्पुस ने अंद्रियास को आकर बताया। फिर अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु के पास आकर कहा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मानव पुत्र के महिमावान होने का समय आ गया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक गेहूं का एक दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह एक ही रहता है। पर जब वह मर जाता है तो अनगिनत दानों को जन्म देता है। जिसे अपना जीवन प्रिय है वह उसे खो देगा, किंतु वह जिसे इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं है उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो वह निश्चय ही मेरा अनुसरण करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो परम पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं कहूं, हे पिता, मुझे दुख की इस घड़ी से बचा, किंतु इस घड़ी के लिए ही तो मैं आया हूं। हे पिता, अपने नाम को महिमा प्रदान कर।
तब आकाशवाणी हुई,
मैंने इसकी महिमा की है और मैं इसकी महिमा फिर करूंगा।
तब वहां मौजूद भीड़ जिसने यह सुना था कहने लगी कि कोई बादल गरजा है। दूसरे कहने लगे,
किसी स्वर्गदूत ने उससे बातें की हैं।
उत्तर में यीशु ने कहा,
यह आकाशवाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी। अब इस जगत के न्याय का समय आ गया है। अब इस जगत के शासक को निकाल दिया जाएगा, और यदि मैं धरती के ऊपर उठा लिया गया तो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा।
वह यह बताने के लिए ऐसा कह रहा था कि वह कैसी मृत्यु मरने जा रहा है। इस पर भीड़ ने उसको जवाब दिया,
हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सदा रहेगा, इसलिए तुम कैसे कहते हो कि मनुष्य के पुत्र को निश्चय ही ऊपर उठाया जाएगा? यह मनुष्य का पुत्र कौन है?
तब यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारे बीच ज्योति अभी कुछ समय और रहेगी, जब तक ज्योति है चलते रहो ताकि अंधेरा तुम्हें घेर न ले, क्योंकि जो अंधेरे में चलता है नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है उसमें विश्वास बनाए रखो ताकि तुम लोग ज्योतिर्मय हो सको।
यीशु यह कहकर कहीं चला गया और उनसे छुप गया। यद्यपि यीशु ने उनके सामने ये सब आश्चर्य चिन्ह प्रकट किए किंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया, ताकि भविष्यवक्ता यशायाह ने जो यह कहा था सत्य सिद्ध हो,
प्रभु हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है, किस पर प्रभु की शक्ति प्रकट की गई है।
इसी कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर कहा था,
उसने उनकी आंखें अंधी और उनका हृदय कठोर बनाया ताकि वे अपनी आंखों से देख न सकें और बुद्धि से समझ न पाएं और मेरी ओर न मुड़ें जिससे मैं उन्हें चंगा कर सकूं।
यशायाह ने यह इसलिए कहा था कि उसने उसकी महिमा देखी थी और उसके विषय में बातें भी की थी, फिर भी बहुत थे, यहाँ तक कि यहूदी नेताओं में से भी ऐसे अनेक थे जिन्होंने उसमें विश्वास किया, किंतु फरीसियों के कारण अपने विश्वास की खुले तौर पर घोषणा नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें आराधनालय से निकाले जाने का भय था। उन्हें मनुष्यों द्वारा दिया गया सम्मान परमेश्वर द्वारा दिए गए सम्मान से अधिक प्यारा था। यीशु ने पुकार कर कहा,
वह जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि उसमें विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया ताकि हर वह व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करता तो भी उसे मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूं। जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा, वह है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है, अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है बल्कि परम पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मैं क्या कहूं और क्या उपदेश दूं, और मैं जानता हूं कि उसके आदेश का अर्थ है अनंत जीवन। इसलिए मैं जो बोलता हूं वह ठीक वही है जो परम पिता ने मुझसे कहा है।
यूहन्ना अध्याय 13। फसह पर्व से पहले यीशु ने देखा कि इस जगत को छोड़ने और परम पिता के पास जाने का उसका समय आ पहुंचा है, तो इस जगत में जो उसके अपने थे और जिन्हें वह प्रेम करता था उन पर उसने चरम सीमा का प्रेम दिखाया। शाम का खाना चल रहा था, शैतान अब तक शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में यह डाल चुका था कि वह यीशु को धोखे से पकड़वाएगा। यीशु यह जानता था कि परमपिता ने सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही वापस जा रहा है, इसलिए वह खाना छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए और एक अंगोछा अपने चारों ओर लपेट लिया, फिर एक घड़े में जल भरा और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और उस अंगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा, फिर जब वह शमौन पत्रस के पास पहुंचा, तो पत्रस ने उससे कहा,
प्रभु क्या तू मेरे पांव धो रहा है?
उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
अभी तू नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर बाद में जान जाएगा।
पत्रस ने उससे कहा,
तू मेरे पांव कभी भी नहीं धोएगा।
यीशु ने उत्तर दिया,
यदि मैं न धोऊं तो तू मेरे पास स्थान नहीं पा सकेगा।
शमौन पत्रस ने उससे कहा,
प्रभु केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दे।
यीशु ने उससे कहा,
जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो, पर सब के सब नहीं।
वह उसे जानता था जो उसे धोखे से पकड़वाने वाला है, इसलिए उसने कहा था, तुम में से सभी शुद्ध नहीं हैं। जब वह उनके पांव धो चुका तो उसने अपने बाहरी वस्त्र फिर पहन लिए और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया और उनसे बोला,
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम उचित हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी जब तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखा है ताकि तुम दूसरों के साथ वही कर सको जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, एक दास स्वामी से बड़ा नहीं है और ना ही एक संदेशवाहक उससे बड़ा है जो उसे भेजता है। यदि तुम लोग इन बातों को जानते हो और उन पर चलते हो तो तुम सुखी होगे। मैं तुम सब के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हें जानता हूं जिन्हें मैंने चुना है, और यह भी कि यहूदा विश्वासघाती है, किंतु मैंने उसे इसलिए चुना है ताकि शास्त्र का यह वचन सत्य हो, वही जिसने मेरी रोटी खाई मेरे विरोध में हो गया। अब यह घटित होने से पहले ही मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि जब यह घटित हो तब तुम विश्वास करो कि वह मैं हूं। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि वह जो किसी भी मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है मुझको ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है।
यह कहने के बाद यीशु बहुत व्याकुल हुआ और साक्षी दी,
मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम में से एक मुझे धोखा देकर पकड़वाएगा।
तब उसके शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि वह किसके बारे में कह रहा है। उसका एक शिष्य यीशु के निकट ही बैठा हुआ था, इसे यीशु बहुत प्यार करता था। तब शमौन पत्रस ने उसे इशारा किया कि पूछे वह कौन हो सकता है जिसके विषय में यीशु बता रहा था। यीशु के प्रिय शिष्य ने सहज में ही उसकी छाती पर झुककर उससे पूछा,
हे प्रभु वह कौन है?
यीशु ने उत्तर दिया,
रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबोकर जिसे मैं दूंगा वही वह है।
फिर यीशु ने रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबोया और उसे उठाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। जैसे ही यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया उसमें शैतान समा गया। फिर यीशु ने उससे कहा,
जो तू करने जा रहा है उसे तुरंत कर।
किंतु वहां बैठे हुओं में से किसी ने भी यह नहीं समझा कि यीशु ने उससे यह बातें क्यों कही। कुछ ने सोचा कि रुपयों की थैली यहूदा के पास रहती है, इसलिए यीशु उससे कह रहा है कि पर्व के लिए आवश्यक सामग्री मोल ले आओ, या यह कह रहा है कि गरीबों को वह कुछ दे दे। इसलिए यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तत्काल चला गया। यह रात का समय था। उसके चले जाने के बाद यीशु ने कहा,
मनुष्य का पुत्र अब महिमावान हुआ है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है, यदि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर अपने द्वारा उसे महिमावान करेगा और वह उसे महिमा शीघ्र ही देगा। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब थोड़ी ही देर और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा कि मैंने यहूदी नेताओं से कहा था, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूँ, वैसा ही अब मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, तभी हर कोई यह जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो।
शमौन पतरस ने उससे पूछा,
हे प्रभु, तू कहां जा रहा है?
यीशु ने उसे उत्तर दिया,
तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, पर तू बाद में मेरे पीछे आएगा।
पतरस ने उससे पूछा,
हे प्रभु, अभी भी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण तक त्याग दूंगा।
यीशु ने उत्तर दिया,
क्या तू अपना प्राण त्यागेगा? मैं तुझे सत्य कहता हूँ कि जब तक तू 3 बार इनकार नहीं कर लेगा, तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा।
यूहन्ना अध्याय 14।
तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। मेरे परम पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूं, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, तो मैं फिर यहां आऊंगा और अपने साथ तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, ताकि तुम भी वहीं रहो जहां मैं हूं। और जहां मैं जा रहा हूं, तुम वहां का रास्ता जानते हो।
थोमा ने उससे कहा,
हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, फिर वहां का रास्ता कैसे जान सकते हैं?
यीशु ने उससे कहा,
मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। यदि तूने मुझे जान लिया होता तो तू परम पिता को भी जानता। अब तू उसे जानता है और उसे देख भी चुका है।
फिलिप्पुस ने उससे कहा,
हे प्रभु, हमें परम पिता का दर्शन करा दे, हमें संतोष हो जाएगा।
यीशु ने उससे कहा,
फिलिप्पुस, मैं इतने लंबे समय से तेरे साथ हूं और अब भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने परम पिता को देख लिया है, फिर तू कैसे कहता है हमें परम पिता का दर्शन करा दे? क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं परम पिता में हूं और परम पिता मुझ में है? वे वचन जो मैं तुम लोगों से कहता हूं अपनी ओर से ही नहीं कहता, परम पिता जो मुझ में निवास करता है अपना काम करता है। जब मैं कहता हूं कि मैं परम पिता में हूं और परम पिता मुझ में है, तो मेरा विश्वास करो, और यदि नहीं तो स्वयं कामों के कारण ही विश्वास करो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वास्तव में वह इन कामों से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूं और मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। कुछ ही समय बाद जगत मुझे और नहीं देखेगा, किंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं परम पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में। वह जो मेरे आदेशों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है मुझसे प्रेम करता है। जो मुझ में प्रेम रखता है उसे मेरा परम पिता प्रेम करेगा, मैं भी उसे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
यहूदा इस्करियोती ने नहीं उससे कहा,
हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और जगत पर नहीं?
उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
यदि कोई मुझ में प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और उससे मेरा परम पिता प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझ में प्रेम नहीं रखता वह मेरे उपदेशों पर नहीं चलता। यह उपदेश जिसे तुम सुन रहे हो मेरा नहीं है, बल्कि उस परम पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुमसे तभी कही थीं जब मैं तुम्हारे साथ था, किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब कुछ बताएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूं, पर तुम्हें इसे मैं वैसे नहीं दे रहा हूं जैसे जगत देता है। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही उसे डरना चाहिए। तुमने मुझे कहते सुना है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुमने मुझसे प्रेम किया होता तो तुम प्रसन्न होते, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि परम पिता मुझसे महान है। और अब यह घटित होने से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया है, ताकि जब यह घटित हो तो तुम्हें विश्वास हो। और मैं अधिक समय तक तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस जगत का शासक आ रहा है, मुझ पर उसका कोई बस नहीं चलता। किंतु ये बातें इसलिए घट रही हैं ताकि जगत जान जाए कि मैं परम पिता से प्रेम करता हूं, और पिता ने जैसी आज्ञा मुझे दी है मैं वैसा ही करता हूं। अब उठो, हम यहां से चलें।
यूहन्ना अध्याय 15। यीशु ने कहा,
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा परम पिता देख रेख करने वाला माली है। मेरी हर उस शाखा को जिस पर फल नहीं लगता वह काट देता है, और हर उस शाखा को जो फलती है वह छांटता है, ताकि उस पर और अधिक फल लगें। तुम लोग तो जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण पहले ही शुद्ध हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाखलता में बनी नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। वह दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह टूट उल्टी शाखा की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। फिर उन्हें बटोर कर आग में झोंक दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल हो और मेरे अनुयायी रहो। जैसे परम पिता ने मुझे प्रेम किया है, मैंने भी तुम्हें वैसे ही प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैं अपने परम पिता के आदेशों को पालते हुए उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरा आदेश है कि तुम आपस में प्रेम करो, वैसे ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है, वह है अपने मित्रों के लिए प्राण न्योछावर कर देना। जो आदेश तुम्हें मैं देता हूं, यदि तुम उन पर चलते रहो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी है जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियत किया है कि तुम जाओ और सफल बनो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सफलता बनी रहे, ताकि मेरे नाम में जो कुछ तुम चाहो परम पिता तुम्हें दे। मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यदि संसार तुमसे बैर करता है तो याद रखो, वह तुमसे पहले मुझसे बैर करता है। यदि तुम जगत के होते तो जगत तुम्हें अपनों की तरह प्यार करता, पर तुम जगत के नहीं हो। मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है और इसीलिए जगत तुमसे बैर करता है। मेरा वचन याद रखो, एक दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। इसीलिए यदि उन्होंने मुझे यातनाएं दी हैं, तो वे तुम्हें भी यातनाएं देंगे, और यदि उन्होंने मेरा वचन माना तो वे तुम्हारा वचन भी मानेंगे। पर वे मेरे कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे किसी भी पाप के दोषी न होते, पर अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर करता है वह परम पिता से बैर करता है। यदि मैं उनके बीच वे कार्य नहीं करता जो कभी किसी ने नहीं किए, तो वे पाप के दोषी न होते, पर अब जब वे देख चुके हैं तब भी मुझसे और मेरे परम पिता दोनों से बैर रखते हैं। किंतु यह इसलिए हुआ कि उनके व्यवस्था विधान में जो लिखा है वह सच हो सके। उन्होंने बेकार ही मुझसे बैर किया है। जब वह सहायक जो सत्य की आत्मा है और परम पिता की ओर से आता है तुम्हारे पास आएगा, जिसे मैं परम पिता की ओर से भेजूंगा, वह मेरी ओर से साक्षी देगा, और तुम भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आदि से ही मेरे साथ रहे हो।
यूहन्ना अध्याय 16।
ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही हैं कि तुम्हारा विश्वास न डगमगा जाए। वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। वास्तव में वह समय आ रहा है जब तुम में से किसी को भी मार कर हर कोई सोचेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वे ऐसा इसलिए करेंगे कि वे न तो परमपिता को जानते हैं और न ही मुझे, किंतु मैंने तुमसे यह इसलिए कहा है ताकि जब उनका समय आए तो तुम्हें याद रहे कि मैंने उनके विषय में तुमको बता दिया था। आरंभ में ये बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, किंतु अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से मुझसे कोई नहीं पूछेगा तू कहां जा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बातें बता दी हैं। तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं, किंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इसमें तुम्हारा भला है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, किंतु यदि मैं चला जाता हूं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में जगत के संदेह दूर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ में विश्वास नहीं रखते। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि अब मैं परम पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे अब और अधिक नहीं देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस जगत के शासक को दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं, किंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वह तुम्हें बताएगा। हर वस्तु जो पिता की है वह मेरी है, इसीलिए मैंने कहा है कि जो कुछ मेरा है वह उसे लेगा और तुम्हें बताएगा। कुछ ही समय बाद तुम मुझे और अधिक नहीं देख पाओगे, और थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे।
तब उसके कुछ शिष्यों ने आपस में कहा,
यह क्या है जो वह हमें बता रहा है, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे और थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे, और मैं परमपिता के पास जा रहा हूँ।
फिर वे कहने लगे,
यह थोड़ी देर बाद क्या है जिसके बारे में वह बता रहा है, वह क्या कह रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं।
यीशु समझ गया कि वे उससे प्रश्न करना चाहते हैं, इसलिए उसने उनसे कहा,
क्या तुम मैंने यह जो कहा है उस पर आपस में सोच विचार कर रहे हो? कुछ ही समय बाद तुम मुझे और अधिक नहीं देख पाओगे, और फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम विलाप करोगे और रोओगे, किंतु यह जगत प्रसन्न होगा। तुम्हें शोक होगा, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब कोई स्त्री जनने लगती है तब उसे पीड़ा होती है, क्योंकि उसकी पीड़ा की घड़ी आ चुकी होती है, किंतु जब वह बच्चा जन चुकी होती है तो इस आनंद से कि एक व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है वह आनंदित होती है और अपनी पीड़ा को भूल जाती है। सो तुम सब भी इस समय वैसे ही दुखी हो, किंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे, और तुम्हारे आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे नाम में परम पिता से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह उसे तुम्हें देगा। अब तक मेरे नाम में तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। मैंने ये बातें तुम्हें दृष्टांत देकर बताई हैं। वह समय आ रहा है जब मैं तुमसे दृष्टांत दे देकर और अधिक समय बात नहीं करूंगा, बल्कि परम पिता के विषय में खोल कर तुम्हें बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम में मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारी ओर से मैं परम पिता से प्रार्थना करूंगा। परम पिता स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया है और यह माना है कि मैं परम पिता से आया हूं। मैं परम पिता से प्रकट हुआ और इस जगत में आया, और अब मैं इस जगत को छोड़कर परम पिता के पास जा रहा हूं।
उसके शिष्यों ने कहा,
देख अब तू बिना किसी दृष्टांत को खोलकर बता रहा है।
अब हम समझ गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। अब तुझे अपेक्षा नहीं है कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हमें यह विश्वास होता है कि तू परमेश्वर से प्रकट हुआ है।
यीशु ने इस पर उनसे कहा,
क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ है? सुनो, समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और तुम में से हर कोई अपने अपने घर लौट जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। किंतु मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा परम पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है।
यूहन्ना अध्याय 17। ये बातें कहकर यीशु ने आकाश की ओर देखा और बोला,
हे परम पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र को महिमा प्रदान कर, ताकि तेरा पुत्र तेरी महिमा कर सके। तूने उसे समूची मनुष्य जाति पर अधिकार दिया है कि वह हर उसको जिसको तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे सौंपे थे उन्हें पूरा करके जगत में मैंने तुझे महिमावान किया है, इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर। हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। जगत से जिन मनुष्यों को तूने मुझे दिया, मैंने उन्हें तेरे नाम का बोध कराया है। वे लोग तेरे थे, किंतु तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन का पालन किया। अब वे जानते हैं कि हर वह वस्तु जो तूने मुझे दी है वह तुझ ही से आती है। मैंने उन्हें वे ही उपदेश दिए हैं जो तूने मुझे दिए थे, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि मैं तुझ से ही आया हूं, और उन्हें विश्वास हो गया है कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जगत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके लिए कर रहा हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। वह सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और मैंने उनके द्वारा महिमा पाई है। मैं अब और अधिक समय जगत में नहीं हूं, किंतु वे जगत में हैं। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर जो तूने मुझे दिया है, ताकि जैसे तू और मैं एक हैं वे भी एक हो सकें। जब मैं उनके साथ था मैंने तेरे उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा की जो तूने मुझे दिया था। मैंने रक्षा की और उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ सिवाय उसके जो विनाश का पुत्र था, ताकि शास्त्र का कहना सच हो। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, किंतु ये बातें मैं जगत में रहते हुए कह रहा हूं, ताकि वे अपने हृदयों में मेरे पूर्ण आनंद को पा सकें। मैंने तेरा वचन उन्हें दिया है, पर संसार ने उनसे घृणा की, क्योंकि वे सांसारिक नहीं हैं, वैसे ही जैसे मैं संसार का नहीं हूं। मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तू उन्हें संसार से निकाल ले, बल्कि यह कि तू उनकी दुष्ट शैतान से रक्षा कर। वे संसार के नहीं हैं, वैसे ही जैसे मैं संसार का नहीं हूं। सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। तेरा वचन सत्य है, जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा है वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को तेरी सेवा में अर्पित कर रहा हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा स्वयं को तेरी सेवा में अर्पित करें। किंतु मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके लिए भी जो इनके उपदेशों द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे, वे सब एक हों, वैसे ही जैसे हे परम पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वे भी हम में एक हों, ताकि जगत विश्वास करे कि मुझे तूने भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि वे भी वैसे ही एक हो सकें जैसे हम एक हैं। मैं उनमें होऊंगा और तू मुझ में होगा, जिससे वे पूर्ण एकता को प्राप्त हों और जगत जान जाए कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे तू मुझे प्रेम करता है। हे परम पिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि सृष्टि की रचना से भी पहले तूने मुझसे प्रेम किया है। हे धार्मिक पिता, जगत तुझे नहीं जानता, किंतु मैंने तुझे जान लिया है और मेरे शिष्य जानते हैं कि मुझे तूने भेजा है। न केवल मैंने तेरे नाम का उन्हें बोध कराया है, बल्कि मैं इसका बोध कराता भी रहूंगा, ताकि वह प्रेम जो तूने मुझ पर दर्शाया है उनमें भी हो और मैं भी उनमें रहूं।
यूहन्ना अध्याय 18। यीशु यह कहकर अपने शिष्यों के साथ छोटी नदी के द्रोन के पार एक बगीचे में चला गया। धोखे से उसे पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु वहां प्रायः अपने शिष्यों से मिला करता था। इसलिए यहूदा रोमी सिपाहियों की एक टुकड़ी और महायाजकों और फरीसियों के भेजे लोगों और मंदिर के पहरेदारों के साथ मशालें, दीपक और हथियार लिए वहां आ पहुंचा। फिर यीशु, जो सब कुछ जानता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, आगे आया और उनसे बोला,
तुम किसे खोज रहे हो?
उन्होंने उसे उत्तर दिया,
यीशु नासरी को।
यीशु ने उनसे कहा,
वह मैं हूँ।
तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा भी वहाँ खड़ा था। जब उसने उनसे कहा वह मैं हूँ, तो वे पीछे हटे और धरती पर गिर पड़े। इस पर एक बार फिर यीशु ने उनसे पूछा,
तुम किसे खोज रहे हो?
वे बोले,
यीशु नासरी को।
यीशु ने उत्तर दिया,
मैंने तुमसे कहा वह मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे खोज रहे हो तो इन लोगों को जाने दो।
यह उसने इसलिए कहा कि जो उसने कहा था वह सच हो, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं खोया जिन्हें तूने मुझे सौंपा था। फिर शमौन पत्रस ने, जिसके पास तलवार थी, अपनी तलवार निकाली और महायाजक के दास का दाहिना कान काटते हुए उसे घायल कर दिया। उस दास का नाम मलखुस था। फिर यीशु ने पत्रस से कहा,
अपनी तलवार म्यान में रख, क्या मैं यातना का वह प्याला न पीऊं जो परमपिता ने मुझे दिया है?
फिर रोमी टुकड़ी के सिपाहियों और उनके सूबेदारों तथा यहूदियों के मंदिर के पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया और उसे बांधकर पहले हन्ना के पास ले गए, जो उस साल के महायाजक कैफा का ससुर था। यह कैफा वही व्यक्ति था जिसने यहूदी नेताओं को सलाह दी थी कि सब लोगों के लिए एक का मरना अच्छा है। शमौन पत्रस तथा एक और शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। महायाजक इस शिष्य को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में घुस गया, किंतु पत्रस बाहर द्वार के पास ही ठहर गया। फिर महायाजक की जान पहचान वाला दूसरा शिष्य बाहर गया और द्वारपालिन से कहकर पत्रस को भीतर ले आया। इस पर उस दासी ने, जो द्वारपालिन थी, कहा,
हो सकता है कि तू भी यीशु का ही शिष्य है?
पत्रस ने उत्तर दिया,
नहीं, मैं नहीं हूँ।
क्योंकि ठंड बहुत थी, दास और मंदिर के पहरेदार आग जलाकर वहाँ खड़े ताप रहे थे। पत्रस भी उनके साथ वहीं खड़ा था और ताप रहा था। फिर महायाजक ने यीशु से उसके शिष्यों और उसकी शिक्षा के बारे में पूछा। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
मैंने सदा लोगों के बीच हर किसी से खुलकर बात की है। सदा मैंने आराधनालयों में और मंदिर में, जहां सभी यहूदी इकट्ठे होते हैं, उपदेश दिया है। मैंने कभी भी छिपाकर कुछ नहीं कहा है। फिर तू मुझसे क्यों पूछ रहा है मैंने क्या कहा है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझे सुना है, मैंने क्या कहा निश्चय ही वे जानते हैं।
जब उसने यह कहा तो मंदिर के एक पहरेदार ने, जो वहीं खड़ा था, यीशु को एक थप्पड़ मारा और बोला,
तूने महायाजक को ऐसे उत्तर देने की हिम्मत कैसे की?
यीशु ने उसे उत्तर दिया,
यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो प्रमाणित कर और बता कि उसमें बुरा क्या था, और यदि मैंने ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है?
फिर हन्ना ने उसे बंधे हुए ही महायाजक कैफा के पास भेज दिया। जब शमौन पत्रस खड़ा हुआ आग ताप रहा था तो उससे पूछा गया,
क्या यह संभव है कि तू भी उसका एक शिष्य है?
उसने इससे इनकार किया। वह बोला,
नहीं, मैं नहीं हूँ।
महायाजक के एक सेवक ने, जो उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका पत्रस ने कान काटा था, पूछा,
पता, क्या मैंने तुझे उसके साथ बगीचे में नहीं देखा था?
इस पर पत्रस ने एक बार फिर इनकार किया और तभी मुर्गे ने बांग दी। फिर वे यीशु को कैफा के घर से रोमी राजभवन में ले गए। सुबह का समय था। यहूदी लोग राजभवन में नहीं जाना चाहते थे कि कहीं अपवित्र न हो जाएं और फसह का भोजन न खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर आया और बोला,
इस व्यक्ति के ऊपर तुम क्या दोष लगाते हो?
उत्तर में उन्होंने उससे कहा,
यदि यह अपराधी न होता तो हम इसे तुम्हें न सौंपते।
इस पर पिलातुस ने उनसे कहा,
इसे तुम ले जाओ और अपनी व्यवस्था के विधान के अनुसार इसका न्याय करो।
यहूदियों ने उससे कहा,
हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है।
यह इसलिए हुआ कि यीशु ने जो बात उसे कैसी मृत्यु मिलेगी यह बताते हुए कही थी, सत्य सिद्ध हो। तब पिलातुस महल में वापस चला गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का राजा है?
यीशु ने उत्तर दिया,
यह बात क्या तू अपने आप कह रहा है या मेरे बारे में यह औरों ने तुझसे कही है?
पिलातुस ने उत्तर दिया,
क्या तू सोचता है कि मैं यहूदी हूँ? तेरे लोगों और महायाजकों ने तुझे मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरी प्रजा मुझे यहूदियों को सौंपे जाने से बचाने के लिए युद्ध करती, किंतु वास्तव में मेरा राज्य यहाँ का नहीं है।
इस पर पिलातुस ने उससे कहा,
तो तू राजा है?
यीशु ने उत्तर दिया,
तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ और इसी प्रयोजन से मैं इस संसार में आया हूँ कि सत्य की साक्षी दूं। हर वह व्यक्ति जो सत्य के पक्ष में है मेरा वचन सुनता है।
पिलातुस ने उससे पूछा,
सत्य क्या है?
ऐसा कहकर वह फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे बोला,
मैं उसमें कोई खोट नहीं पा सका हूँ। और तुम्हारी यह रीति है कि फसह पर्व के अवसर पर मैं तुम्हारे लिए किसी एक को मुक्त कर दूं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं?
एक बार वे फिर चिल्लाए,
इसे नहीं बल्कि बरब्बा को छोड़ दो।
बरब्बा एक बागी था। यूहन्ना अध्याय 19। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़वा कर कोड़े लगवाए। फिर सैनिकों ने कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उसके सिर पर रख दिया और उसे बैजनी रंग के कपड़े पहनाए और उसके पास आ आ कर कहने लगे,
यहूदियों का राजा जीता रहे।
और फिर उसे थप्पड़ मारने लगे। पिलातुस एक बार फिर बाहर आया और उनसे बोला,
देखो मैं तुम्हारे पास उसे फिर बाहर ला रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि मैं उसमें कोई खोट नहीं पा सका।
फिर यीशु बाहर आया, वो कांटों का मुकुट और बैजनी रंग का चोगा पहने हुए था। तब पिलातुस ने कहा,
यह रहा वो पुरुष।
जब उन्होंने उसे देखा तो महायाजकों और मंदिर के पहरेदारों ने चिल्ला कर कहा,
इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो।
पिलातुस ने उससे कहा,
तुम इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ा दो, मैं इसमें कोई खोट नहीं पा सक रहा हूँ।
यहूदियों ने उसे उत्तर दिया,
हमारी व्यवस्था है जो कहती है इसे मरना होगा, क्योंकि इसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है।
अब जब पिलातुस ने उन्हें यह कहते सुना तो वह बहुत डर गया और फिर राजभवन के भीतर जाकर यीशु से कहा,
तू कहां से आया है?
किंतु यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। फिर पिलातुस ने उससे कहा,
क्या तू मुझसे बात नहीं करना चाहता? क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे छोड़ने का अधिकार रखता हूँ और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है?
यीशु ने उसे उत्तर दिया,
तुम्हें तब तक मुझ पर कोई अधिकार नहीं हो सकता था जब तक वह तुम्हें परम पिता द्वारा नहीं दिया गया होता। इसलिए जिस व्यक्ति ने मुझे तेरे हवाले किया है तुझसे भी बड़ा पापी है।
यह सुनकर पिलातुस ने उसे छोड़ने का कोई उपाय ढूंढने का यत्न किया, किंतु यहूदी चिल्लाए,
यदि तू इसे छोड़ता है तो तू कैसर का मित्र नहीं है। कोई भी जो अपने आप को राजा होने का दावा करता है वह कैसर का विरोधी है।
जब पिलातुस ने ये शब्द सुने तो वह यीशु को बाहर उस स्थान पर ले गया जो पत्थर का चबूतरा कहलाता था, इसे इब्रानी भाषा में गब्बता कहा गया है, और वहाँ न्याय के आसन पर बैठा। यह फसह सप्ताह की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर हो रही थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा,
यह रहा तुम्हारा राजा।
वे फिर चिल्लाए,
इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसे क्रूस पे चढ़ा दो।
पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राजा को मैं क्रूस पर चढ़ाऊं?
इस पर महायाजकों ने उत्तर दिया,
कैसर को छोड़कर हमारा कोई दूसरा राजा नहीं है।
फिर फिर पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हें सौंप दिया। इस तरह उन्होंने यीशु को हिरासत में ले लिया। अपना क्रूस उठाए हुए वह उस स्थान पर गया जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। इसे इब्रानी भाषा में गुलगुता कहते थे। वहां से उन्होंने उसे दो अन्य के साथ क्रूस पर चढ़ाया, एक इधर दूसरा उधर और बीच में यीशु। पिलातुस ने दोष पत्र क्रूस पर लगा दिया। इसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने उस दोष पत्र को पढ़ा, क्योंकि जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वह स्थान नगर के पास ही था और वह ऐलान इब्रानी, यूनानी और लातिनी में लिखा था। तब प्रमुख यहूदी नेता पिलातुस से कहने लगे,
यहूदियों का राजा मत कहो, बल्कि कहो उसने कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ।
पिलातुस ने उत्तर दिया,
मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया।
जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन्होंने उसके वस्त्र लिए और उन्हें चार भागों में बांट दिया, हर भाग एक सिपाही के लिए। उन्होंने कुर्ता भी उतार लिया, क्योंकि वह कुर्ता बिना सिलाई के ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा,
इसे फाड़े नहीं बल्कि इसे कौन ले इसके लिए पर्ची डाल ले,
ताकि शास्त्र का यह वचन पूरा हो।
उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र के लिए पर्ची डाली।
इसलिए सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माँ, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने जब अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को पास ही खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा,
प्रिय महिला, यह रहा तेरा बेटा।
फिर वह अपने शिष्य से बोला,
यह रही तेरी माँ।
और फिर उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने जान लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका है। फिर इसलिए कि शास्त्र सत्य सिद्ध हो उसने कहा,
मैं प्यासा हूं।
वहां सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, इसलिए उन्होंने एक स्पंज को सिरके में पूरी तरह डुबोकर हिस्सप अर्थात जूफे की टहनी पर रखा और ऊपर उठाकर उसके मुंह से लगाया। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला,
पूरा हुआ।
तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिए। यह फसह की तैयारी का दिन था। सप्त के दिन उसके शव क्रूस पर न लटके रहें, क्योंकि सप्त का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उनके शव वहां से हटा दिए जाएं। तब सिपाही आए और उनमें से पहले की और फिर दूसरे व्यक्ति की जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे टांगें तोड़ी। पर जब वे यीशु के पास आए उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। पर उनमें से एक सिपाही ने यीशु के पंजर में अपना भाला बेधा, जिससे तत्काल ही खून और पानी बह निकला। जिसने यह देखा था उसने साक्षी दी और उसकी साक्षी सच है। वह जानता है कि वह सच कह रहा है ताकि तुम लोग विश्वास करो। यह इसलिए हुआ कि शास्त्र का वचन पूरा हो,
उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी।
और धर्मशास्त्र में लिखा है,
जिसे उन्होंने भाले से बेधा वे उसकी ओर ताकेंगे।
इसके बाद अरमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का एक अनुयायी था किंतु यहूदियों के डर से इसे छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि उसे यीशु के शव को वहां से ले जाने की अनुमति दी जाए। पिलातुस ने उसे अनुमति दे दी, सो वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो यीशु के पास रात को पहले आया था, वहां कोई 30 किलो मिला हुआ गंधरस और एलवा लेकर आया। फिर वे यीशु के शव को ले गए और यहूदियों के शव को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित सामग्री के साथ कफन में लपेट दिया। जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वहां एक बगीचा था और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें अभी तक किसी को रखा नहीं गया था, क्योंकि वह शब्द की तैयारी का दिन शुक्रवार था और वह कब्र बहुत पास थी, इसलिए उन्होंने यीशु को उसी में रख दिया। यूहन्ना अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन सुबह अंधेरा रहते मरियम मगदलीनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह दौड़कर शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास जो यीशु का प्रिय था पहुंची और उनसे बोली,
वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें नहीं पता कि उन्होंने उसे कहां रखा है।
फिर पतरस और वह दूसरा शिष्य वहां से कब्र को चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, पर दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले जा पहुंचा। उसने नीचे झुककर देखा कि वहां कफन के कपड़े पड़े हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। तभी शमौन पतरस भी जो उसके पीछे आ रहा था आ पहुंचा और कब्र के भीतर चला गया। उसने देखा कि वहां कफन के कपड़े पड़े हैं और वह कपड़ा जो गाड़ते समय उसके सिर पर था कफन के साथ नहीं बल्कि उससे अलग एक स्थान पर तह करके रखा हुआ है। फिर दूसरा शिष्य भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अब भी शास्त्र के इस वचन को नहीं समझे थे कि उसका मरे हुओं में से जी उठना निश्चित है। फिर वे शिष्य अपने घरों को वापस लौट गए। मरियम रोती बिलखती कब्र के बाहर खड़ी थी। रोते बिलखते वह कब्र के अंदर झांकने के लिए नीचे झुकी जहां यीशु का शव रखा था। वहां उसने श्वेत वस्त्र धारण किए, दो स्वर्गदूत एक सिराहने और दूसरा पैताने बैठे देखे। उन्होंने उससे पूछा,
हे स्त्री तू क्यों विलाप कर रही है?
उसने उत्तर दिया,
वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मुझे पता नहीं कि उन्होंने उसे कहां रखा है।
इतना कहकर वह मुड़ी और उसने देखा कि वहां यीशु खड़ा है। यद्यपि वह जान नहीं पाई कि वह यीशु था, यीशु ने उससे कहा,
हे स्त्री तू क्यों रो रही है? तू किसे खोज रही है?
यह सोचकर कि वह माली है उसने उससे कहा,
श्रीमान यदि कहीं तुमने उसे ठाया है तो मुझे बताओ तुमने उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी।
यीशु ने उससे कहा,
मरियम।
वह पीछे मुड़ी और इब्रानी में कहा,
रब्बुनी
अर्थात गुरु। यीशु ने उससे कहा,
मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता मैं अपने परम पिता और तुम्हारे परम पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ।
मरियम मगदलीनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई,
मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझे बातें बताई हैं।
उसी दिन शाम को जो सप्ताह का पहला दिन था उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे। तभी यीशु वहां आकर उनके बीच खड़ा हो गया और उनसे बोला,
तुम्हें शांति मिले।
इतना कह चुकने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। शिष्यों ने जब प्रभु को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा,
तुम्हें शांति मिले, वैसे ही जैसे परम पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ।
यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, जिस किसी भी व्यक्ति के पापों को तुम क्षमा करते हो उन्हें क्षमा मिलती है, और जिनके पापों को तुम क्षमा नहीं करते वे बिना क्षमा पाए रहते हैं।
थोमा जो बारहों में से एक था और दिदीमस अर्थात जुड़वा कहलाता था जब यीशु आया था तब उनके साथ न था। दूसरे शिष्य उससे कह रहे थे,
हमने प्रभु को देखा है।
किंतु उसने उनसे कहा,
जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उनमें अपनी उंगली न डाल लूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा।
8 दिन बाद उसके शिष्य एक बार फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। यद्यपि दरवाजे पर ताला पड़ा था, यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला,
तुम्हें शांति मिले।
फिर उसने थोमा से कहा,
हाँ अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल, संदेह करना छोड़ और विश्वास कर।
उत्तर देते हुए थोमा बोला,
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
यीशु ने उससे कहा,
तूने मुझे देख कर मुझ में विश्वास किया है, किंतु धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास रखते हैं।
यीशु ने और भी अनेक आश्चर्य चिन्ह अपने अनुयायियों को दर्शाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं, और जो बातें यहाँ लिखी हैं वे इसलिए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और इसलिए कि विश्वास करते हुए उसके नाम से तुम जीवन पाओ। यूहन्ना अध्याय 21। इसके बाद झील तिबरियास पर यीशु ने शिष्यों के सामने फिर अपने आप को प्रकट किया। उसने अपने आप को इस तरह प्रकट किया, शमौन पत्रस, थोमा जो जुड़वा कहलाता था, गलील के काना का नतनाएल, जब्दी के बेटे और यीशु के दो अन्य शिष्य वहां इकट्ठे थे। शमौन पत्रस ने उनसे कहा,
मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ।
वे उससे बोले,
हम भी तेरे साथ चल रहे हैं।
तो वे उसके साथ चल दिए और नाव में बैठ गए, पर उस रात वे कुछ नहीं पकड़ पाए। अब तक सुबह हो चुकी थी, तभी वहाँ यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, किंतु शिष्य जान नहीं सके कि वह यीशु है। फिर यीशु ने उनसे कहा,
बालकों तुम्हारे पास कोई मछली है?
उन्होंने उत्तर दिया,
नहीं।
फिर उसने कहा,
नाव की दाहिनी तरफ जाल फेंको तो तुम्हें कुछ मिलेगा।
सो उन्होंने जाल फेंका, किंतु बहुत अधिक मछलियों के कारण वे जाल को वापस खींच नहीं सके। फिर यीशु के प्रिय शिष्य ने पतरस से कहा,
यह तो प्रभु है।
जब शमौन ने यह सुना कि वह प्रभु है, तो उसने अपना बाहर पहनने का वस्त्र कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और पानी में कूद पड़ा। किंतु दूसरे शिष्य मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए नाव से किनारे पर आए, क्योंकि वे धरती से अधिक दूर नहीं थे, उनकी दूरी कोई 100 मीटर की थी। जब वे किनारे आए, उन्होंने वहां दहकते कोयलों की आग जलती देखी, उस पर मछली और रोटी पकने को रखी थी। यीशु ने उनसे कहा,
तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ।
फिर शमौन पतरस नाव पर गया और 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। जाल में यद्यपि इतनी अधिक मछलियां थीं, फिर भी जाल फटा नहीं। यीशु ने उनसे कहा,
यहाँ आओ और भोजन करो।
उसके शिष्यों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि वह उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जान गए थे कि वह प्रभु है। यीशु आगे बढ़ा, उसने रोटी ली और उन्हें दे दी, और ऐसे ही मछलियां भी दी। अब यह तीसरी बार थी जब मरे हुओं में से जीव उठने के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ था। जब वे भोजन कर चुके, तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा,
यूहन्ना के पुत्र शमौन, जितना प्रेम ये मुझसे करते हैं, तू मुझसे उससे अधिक प्रेम करता है?
पतरस ने यीशु से कहा,
हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ।
यीशु ने पतरस से कहा,
मेरे मेमनों की रखवाली कर।
वह उससे दोबारा बोला,
यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझे प्रेम करता है?
पतरस ने यीशु से कहा,
हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ।
यीशु ने पतरस से कहा,
मेरी भेड़ों की रखवाली कर।
यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा,
यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझे प्रेम करता है?
पतरस बहुत व्यथित हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा,
हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, जब तू जवान था तब तू अपनी कमर पर फेंटा कसकर जहाँ चाहता था चला जाता था, पर जब तू बूढ़ा होगा तो हाथ पसारेगा और कोई दूसरा तुझे बांध कर जहाँ तू नहीं जाना चाहता वहाँ ले जाएगा।
उसने यह दर्शाने के लिए ऐसा कहा कि वह कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। इतना कहकर उसने उससे कहा,
मेरे पीछे चला आ।
पतरस पीछे मुड़ा और देखा कि वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम करता था उनके पीछे आ रहा है। यह वही था जिसने भोजन करते समय उसकी छाती पर झुककर पूछा था, हे प्रभु, वह कौन है जो तुझे धोखे से पकड़वाएगा? सो जब पतरस ने उसे देखा तो वह यीशु से बोला,
हे प्रभु, इसका क्या होगा?
यीशु ने उससे कहा,
यदि मैं यह चाहूं कि जब तक मैं आऊं यह यही रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे चला आ।
इस तरह यह बात भाइयों में यहाँ तक फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। यीशु ने यह नहीं कहा था कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कहा था, यदि मैं यह चाहूं कि जब तक मैं आऊं यह यहीं रहे तो तुझे क्या। यही वह शिष्य है जो इन बातों की साक्षी देता है और जिसने ये बातें लिखी हैं। हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच है। यीशु ने और भी बहुत से काम किए, यदि एक एक करके वे सब लिखे जाते तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे इतनी अधिक होती कि समूची धरती पर नहीं समा पाती।